ओम शांति। आप सब भी मेरे साथ बोलेंगे प्यार से, ओम शांति, ओम शांति। एक बार मुस्कुरा के सभी बोलें, ओम शांति। आज की इस संध्या वेला में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम अभी शुरू करने जा रहे हैं प्लेनरी सेशन 2, और इस सेशन के लिए आज के हमारे सम्मानित अतिथि हैं। मैं ससम्मान उनको मंच पर आमंत्रित करता हूं। सर्वप्रथम मैं बुलाना चाहूंगा हमारे बीच में खामगांव से एडिटर दैनिक देश उन्नति के एडिटर आदरणीय डॉक्टर राजेश राजौरे सर को मैं आमंत्रित करता हूं, कृपया मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। साथ ही साथ मीडिया विंग के जोनल कोऑर्डिनेटर आदरणीय बीके नतमल भाई जी, मैं आपको भी मंच पर आमंत्रित करता हूं, कृपया आएं और अपना स्थान ग्रहण करें। आज के कार्यक्रम में हमारे बीच में गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में एडिटर इन चीफ जनमंत्र.com रायपुर से पधारे आदरणीय भाई विशाल यादव जी को मैं आमंत्रित करता हूं, कृपया मंच पर आएं, अपना स्थान ग्रहण करें। साथ ही साथ न्यूज सर्विस डिवीजन ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली से हमारे बीच में पधारी आदरणीय बहन जी आशा निवेदी जी को भी मैं आमंत्रित करता हूं, कृपया मंच पर आकर अपना आसन ग्रहण करें। हमारे बीच में एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट इंटरनेशनल हिंदी काउंसिल से रुड़की से पधारे आदरणीय डॉक्टर आनंद भरद्वाज जी, आपका भी मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं, कृपया मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे बीच में आदरणीय गेस्ट ऑफ ऑनर कुंवर राज अस्थाना जी, जो कि चीफ एडिटर हैं दिव्य हिमगिरी देहरादून से हमारे बीच में पहुंचे हैं, आपका भी हम सादर स्वागत अभिनंदन करते हैं, कृपया मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे बीच में नेशनल सेक्रेटरी जनरल ऑल इंडिया स्मॉल मीडियम न्यूज पेपर ऑफ इंडिया दिशा से पधारे, गुजरात से पधारे आदरणीय भाई साहब शंकर कतीरा जी को मैं आपको भी आमंत्रित करता हूं, कृपया मंच पर स्थान ग्रहण करें। और कुछ ही पलों में हमारे बीच में हमारे आज के इस कार्यक्रम के चेयरपर्सन आदरणीय डॉक्टर मोहन सिंगल भाई साहब पहुंचने वाले हैं, वो भी हमें अभी ज्वाइन करेंगे। और साथ ही साथ हमारे मेडिटेशन एक्सपीरियंस के लिए हमारे बीच में आदरणीय बीके सुमन दीदी जी, वो भी कुछ ही समय में हमारे बीच में यहाँ मंच पर स्थान ग्रहण करेंगे। मंचासीन सभी अतिथियों का हम तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करते हैं, और इस सभागार में उपस्थित सभी देश भर से पधारे हमारे सभी सम्मानित पत्रकार जगत के सम्मानित भाई और बहनों, आप सभी का भी सादर अभिनंदन, स्वागत, वंदन और प्रणाम। आज के इस कार्यक्रम को हम प्रारंभ करें उससे पूर्व हम हमारी बहनों को आमंत्रित करते हैं कि हमारे मंचासीन सभी अतिथियों का बैजेज और बुके देकर के स्वागत अभिनंदन करें। हमारे म्यूजिक के साथी जो भाई हैं, कृपया म्यूजिक अपना, और हम सभी है ताली बजा करके सभी का स्वागत अभिनंदन करेंगे। ये शाम की ये सुहानी शाम निश्चित ही बहुत ही सुंदर है, जो आज सुंदर विषय पर हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, जिस पर चिंतन करेंगे, मनन करेंगे और महान विभूतियों को हम सुनेंगे। बहने सभी सम्मानित अतिथियों का पुष्प गुच्छों से और अंगवस्त्र पहनाकर और बैजित पहनाकर सभी का स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। हम सब भी ताली बजा करके सभी का स्वागत अभिनंदन करें। आपके चेहरे की जो मुस्कान है वही तो आज के कार्यक्रम की शान है। आप सबका खिला हुआ चेहरा, उमंग उत्साह से भरा हुआ चेहरा निश्चित ही आज के सुंदर विषय पर हम सब यहाँ बहुत कुछ अनुभव करेंगे, सीखेंगे, मनन करेंगे, क्योंकि आज हमारे बीच में जो विद्वज्जन हैं वो अलग अलग फील्ड से और बहुत ही अनुभव हासिल किए हुए हैं, जिनके विचार आज हम सब इस संध्या वेला में सुनेंगे। धन्यवाद बहनों को मैं धन्यवाद करता हूं, सभी का पुष्पगुच्छ और बैजेज के द्वारा सभी का स्वागत अभिनंदन किया। इसी कड़ी में मैं शब्दों के द्वारा स्वागत करने के लिए हमारे बीच में मीडिया विंग के जोनल कोऑर्डिनेटर जो कि कटक से पधारे हैं आदरणीय नथमल भाई जी, जो कि पिछले 45 वर्षों से समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जन कल्याण के कार्यों में लगे हुए हैं। और आप मीडिया विंग के जोनल कोऑर्डिनेटर के साथ साथ आप जूरिस्ट विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर भी हैं और वर्ष 2016 में आपको राजस्थान गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके अलावा ब्रह्मा कुमारी संस्थान की 100 से भी अधिक आर्ट गैलरी जो भारत और भारत के बाहर भी निर्मित हुई, बनाई गई, जिससे हजारों लाखों लोगों को सुंदर आध्यात्मिक संदेश मिल रहा है, प्रेरणा मिल रही है, उसके आप संयोजक भी हैं, राष्ट्रीय संयोजक हैं और आज हमारे बीच में हैं। हम चाहेंगे कि आज अपने शब्दों से हमारे सभी सम्मानित अतिथियों का और सभा में पधारे सभी सम्मानित पत्रकार जगत की विशेष महान विभूतियों का स्वागत अभिनंदन करें आदरणीय श्री नथमल भाई जी।
ओम शांति, सभी बोलेंगे ओम शांति, ओम शांति। आज शाम का ये सत्र प्लेनरी 2 बहुत ही सुंदर सब्जेक्ट पर हम सब सुनेंगे और इसमें बताया गया है कि न्यू सोशल ऑर्डर, मीडिया जो है न्यू सोशल ऑर्डर, तो हम सभी वो कर्णधार हैं जो चाहे तो न्यू सोशल ऑर्डर या समाज को एक नई दिशा और नई दशा परिवर्तन करने के लिए बहुत ही सशक्त हैं, जिसको हम कहें कि आप सबके पास कलम की और कैमरे की वो ताकत है। उस ताकत को हम सभी जानते हैं कि आप जिधर चाहें उधर समाज को दिशा और दर्शन दे सकते हैं। मैं तो ये कहूंगा कि दे सकते नहीं, दे भी रहे हैं। तो उसी संदर्भ में आज हम सभी जो खास विशेष हमारे आज के कीनोट स्पीकर भ्राता डॉक्टर राजेश राजौरी जी, उनका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। साथ साथ ब्रदर विशाल यादव जी जो एडिटर इन चीफ जनमंत्र रायपुर से पधारे हैं, आपसे हमारा लंबा परिचय है, बहुत ही नम्र और विशेष सेवा करने के निमित्त हैं, तो आपका भी बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है, स्वागत है। सरकार ने बहुत सारे टैक्स लगाए हैं लेकिन तालियों पर अभी टैक्स नहीं है, तो थोड़ा सा, और इससे क्या होता है कि हमारी एक्सरसाइज हो जाती है। हमारी बहन आशा निवेदी जी, आपका भी बहुत बहुत दिल से स्वागत है, स्वागत है। ऑल इंडिया रेडियो में आपकी सेवाएं हैं, दिल्ली से पधारे हैं। डॉक्टर आनंद भारद्वाज जी, आपका भी बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है, स्वागत है। हमारी आदरणीय सुमन दीदी जी थोड़े समय में हमारे बीच में पहुंचेंगे, इन एडवांस हमारी सुमन दीदी जी का भी स्वागत है, स्वागत है। हमारे आज के गेस्ट ऑफ ऑनर कुंवर राज अस्थाना जी, आप खास देहरादून से पधारे हैं, तो आपका भी बहुत दिल से स्वागत है, स्वागत है। हमारे आदरणीय भ्राता शंकर कटारिया जी, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है। और हमारे आज के चेयरपर्सन बहुत ही विद्वत मोहन सिंगल भाई जी, वो भी हमारे बीच में थोड़े समय में उपस्थित होंगे। तो ऐसे महान आत्माओं का हम बहुत दिल से स्वागत करते हैं। साथ साथ में हमारे प्रहलाद भाई बहुत स्वीट तरीके से आज मन संचालन कर रहे हैं और करेंगे, तो आपका भी बहुत दिल से स्वागत है। हमारी आदरणीय सुमन दीदी जी हमारे बीच में हमारे मध्य पहुंच गई हैं, तो आपका बहुत बहुत दिल से स्वागत है, स्वागत है। और खास जो हमारे सम्मुख उपस्थित हैं, आपका तो क्या कहना है, क्योंकि अगर आप ना हो तो मन पे बैठे हुए भी क्या करेंगे। तो इसलिए आपका जोरदार स्वागत है और अपने लिए जोरदार तालियों से आप अपनी खुशी को जाहिर करेंगे। तो ऐसे सभी को इस सत्र में पधारने के लिए फिर से एक बार सभी का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। ओम शांति।
सभी का सुंदर शब्दों के द्वारा स्वागत करने वाले हमारे ऐसे आदरणीय नथमल भाई जी, आपका भी तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन है, जिन्होंने बहुत ही सुंदर अपनी मधुर वाणी से सभी का स्वागत अभिनंदन किया। भाई साहब बोल रहे थे कि तालियों पर टैक्स नहीं है, तो सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और सभी ने तालियां बजा दी। वैसे मैं मुस्कुराहट से जुड़ी एक बात बताना चाहूंगा। कहते हैं कि जो लोग मुस्कुराते हैं उनके जीवन की आधी समस्याएं तो वैसे ही समाप्त हो जाती हैं। तो मुस्कुराना बहुत बड़ी एक शक्ति भी है। अगर आप खुश रहना चाहते हैं और खुश रहते हैं तो आप देखेंगे कि जीवन में अगर कोई चुनौती, कोई समस्या आपके सामने आएगी भी, तो वो आपकी खुशी उस समस्या को खत्म कर देगी और उसके साथ साथ आपसे जो भी मिलेगा वो भी जो है वो खुशी से, वो ऊर्जा से और शक्ति से भर जाएगा। आज हम सब एक सुंदर विषय पर यहाँ पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं, जिसका विषय है नवीन सामाजिक व्यवस्था के उत्प्रेरक के रूप में मीडिया। और ये बहुत ही सुंदर विषय है। मैं सभी मंचासीन महानुभाव अतिथि और सभा में उपस्थित सभी सम्मानीय जनों को प्रणाम करते हुए ये जरूर कहूंगा कि आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं जो वर्तमान और भविष्य की दिशा और दशा दोनों तय करने का आधार है, अगर इस विषय की गहराई में जाया जाए तो। जैसे हमने आपको बताया कि नवीन सामाजिक व्यवस्था के उत्प्रेरक के रूप में मीडिया, कहा जाता है कि कलम में वह ताकत है जो तलवार में भी नहीं होती, और आज के युग में यही कलम, कैमरा और कीबोर्ड बनकर मीडिया के रूप में हमारे समाज की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल रहा है। आज मीडिया सिर्फ खबरें देने का माध्यम नहीं है, यह हमारी सोच, संस्कार, व्यवहार, सामाजिक संरचना को प्रभावित करने वाला एक शक्तिशाली उत्प्रेरक बन चुका है। मीडिया बहुत सारी जीवन में दिव्य गुणों को भरने का, बहुत सारे जीवन को एक शक्तिशाली तरीके से जीने का एक माध्यम भी है। क्योंकि एक खबर जब हम सुनते हैं तो खुशी भी होती है, और दूसरी खबर कई बार जब ऐसी सुन लेते हैं, जैसे अभी हमने हाल ही में अभी एक दो तीन दिन पहले एक जबलपुर की घटना देखी तो मन को कितनी पीड़ा हुई। तो कई बार ये ऐसा एक माध्यम है जिसके माध्यम से हम खुश भी होते हैं और कई बार उस जाल में भी फंस जाते हैं, दुखी भी हो जाते हैं। तो बहुत इसके जो है रूप हैं। यह हमें जोड़ता भी है और कभी कभी यह हमें तोड़ भी देता है। यह सच्चाई का आईना भी है और कभी कभी भ्रम का जाल भी है। आज का यह प्रश्न नहीं है कि मीडिया शक्तिशाली है या नहीं, बल्कि प्रश्न यह है कि हम इस शक्ति का उपयोग किस दिशा में कर रहे हैं। क्या मीडिया हमें एक बेहतर, सशक्त और जागरूक समाज की ओर ले जा रहा है? ये प्रश्न है जो हम सबको अपने आप से पूछना है। या फिर हम उसकी चमक में कहीं अपने मूल पहचान और मूल्यों को खोते जा रहे हैं? इन्हीं गहन और महत्वपूर्ण विषय पर आज हमारे बीच में उपस्थित सम्माननीय वक्तागण हैं, जो अलग अलग फील्ड से हैं और महारत हासिल किए हुए हैं, कई वर्षों का आपका अनुभव है। और निश्चित ही ये जो वक्तागण आज हमारे बीच में यहाँ उपस्थित हैं, इनके अनुभव हम सभी को प्रेरणा देंगे, नई दृष्टि, नई सोच और नई उमंग भरने का आज ये काम करेंगे। तो आइए हम सभी खुले मन से और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ इस विषय को सुने, समझें और अपने जीवन में उतारने का संकल्प में इसी विश्वास और उत्साह के साथ मैं कार्यक्रम को शुरू करते हुए सबसे पहले कीनोट स्पीकर के रूप में मैं आदरणीय डॉक्टर राजेश राजौरे सर को आमंत्रित करता हूं कि वो कृपया मंच पर आए और संबंधित विषय पर अपना प्रेरक उद्बोधन सभी के बीच में रखें। मैं राजौरे सर के बारे में बताना चाहूंगा, यह एक ऐसे व्यक्तित्व है हमारे बीच में जो पिछले 42 वर्षों से दीर्घ पत्रकारिता जीवन में न केवल लेखनी से समाज को दिशा दी, बल्कि आपके विचारों ने नई चेतना भी जगाई। डॉक्टर राजेश राजौरे जी महाराष्ट्र शासन द्वारा पुरस्कृत, अधिस्वीकृत धारक वरिष्ठ पत्रकार हैं। वर्तमान में आप दैनिक देशोन्नति मराठी दैनिक पेपर जो है उसके जिला संस्करण बुलढाणा के संपादक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपने पत्रकारिता के क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त करते हुए पीएचडी और अन्य डिग्री इसमें हासिल की, साथ ही साथ आप योग के क्षेत्र में भी सक्रिय रहते हुए योग विद्या धाम नासिक के योग शिक्षक के रूप में भी आप जुड़े हैं। आपकी लेखनी का प्रभाव आपकी प्रकाशित कृतियों में स्पष्ट झलकता है। आपकी चर्चित मराठी पुस्तक जो कि बहुत ही अच्छी पुस्तक है, जिसको मैं पत्रकारिता का वास्तव के रूप में है, जिसके 4 संस्करण जो है प्रकाशित हो चुके हैं और इसके साथ साथ कई अनेक लेख संग्रह हैं जो दूसरों को प्रेरणा देते हैं और कई विद्वत जन ने उसको सराहा है। आपकी विशिष्ट उपलब्धियों की अगर बात करें तो आपने संपादकीय, विज्ञापन और सर्कुलेशन तीनों ही क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य किया है। आपके लेखन की सराहना वरिष्ठ संपादक एवं श्रेष्ठ विचारक MJ बैद जी ने भी तरुण भारत में विशेष स्तंभ के माध्यम से की है। आपको पत्रकारिता के क्षेत्र में अनेक प्रतिष्ठित सम्मानों से नवाजा गया, जिनमें वर्ष 2015 का सर्वोच्च सम्मान जो है दर्पण पुरस्कार, वर्ष 2018 का राज्य स्तरीय पत्रकार भूषण सम्मान तथा वर्ष 2019 का गुणवंत कामगार पुरस्कार विशेष उल्लेखनीय है। इसके साथ ही आप ब्रह्मा कुमारी संस्थान के मीडिया विंग से विगत कई वर्षों से निरंतर एक प्रेरणादायी वक्ता के रूप में जुड़कर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे बहुआयामी व्यक्तित्व, प्रखर चिंतक, अनुभवी पत्रकार डॉक्टर राजेश राजौरी जी का हम सभी हृदय से स्वागत अभिनंदन करते हैं। जोरदार तालियों बजाकर आपका स्वागत अभिनंदन है। आइए सर।
बहुत बहुत धन्यवाद ब्रदर BK प्रहलाद जी, आपने जरा ज्यादा ही लंबाई से विस्तार परिचय दे दिया है। नेशनल मीडिया कॉन्फ्रेंस एंड रिट्रीट 30 अप्रैल से 4 मई तक चलने वाले इस कॉन्फ्रेंस के प्लानरी सेशन सेकंड में हम लोग नवीन सामाजिक व्यवस्था के उत्प्रेरक के रूप में मीडिया, इस सब्जेक्ट को लेकर आज यहाँ पर चर्चा के लिए उपस्थित हुए हैं। इस सब्जेक्ट के चर्चा के लिए मंच पर आसीन हमारे आदरणीय वरिष्ठ ब्रदर BK नथमल जी, गेस्ट ऑफ ऑनर ब्रदर विशाल यादव जी, सिस्टर आशा निवेदी जी, आनंद भारद्वाज जी, BK सुमन दीदी, प्रोफेसर कुंवर राज अस्थाना जी और ब्रदर शंकर कटारिया जी, और चेयरपर्सन अभी यहाँ आ ही जाएंगे श्री मोहन सिंगल जी, उपस्थित पूरे देश भर से आए मेरे भाई और बहनों, विषय बहुत ही सुंदर है। जिस किसी ने भी इस विषय की मतलब चुना है विषय, कई कई मराठी न्यूज़पेपर का संपादक हूँ तो हो सकता है कुछ मराठी शब्द आ जाए, हिंदी शब्द लिख कर ही लाया हूँ, क्योंकि अभी इसका जो पहला शब्द है कि उत्प्रेरक के रूप में मीडिया, यहाँ मंच के सामने मेरे वरिष्ठ जो मेरे PhD के गाइड रहे हैं डॉक्टर BK सोमनाथ भाई उपस्थित है, गोपाल नारसन जी उपस्थित है, प्रियंका कौशल उपस्थित है, दिल्ली से आई हमारी दीदी जो मीडिया में काम करती है ज्योति दीदी उपस्थित है। तो उत्प्रेरक ये शब्द ही मुझे पहले थोड़ा सा मराठी के लिए अड़चन वाला था तो मैंने कठिनाई वाला था। मैं पूछा उनको सोमनाथ भाई को उत्प्रेरक कहने का था, उन्होंने मराठी में समझा दिया तो इतना इजी लगा कि बस पूछो ही मत, बोले प्रोत्साहन। मराठी में हम कहते हैं कि याला प्रोत्साहन दिया, कोई भी चीज को बढ़ावा देना है तो उत्प्रेरक के रूप में मीडिया, ऐसा अपना जो आज का है नई सामाजिक व्यवस्था के उत्प्रेरक रूप में मीडिया। नई सामाजिक व्यवस्था के उत्प्रेरक रूप में मीडिया को हम जब देखते हैं तो यह विषय बहुत अच्छा से चुना गया। ऐसा मैंने कहा कि यह विषय केवल मीडिया की भूमिका तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज, संस्कृति, नैतिकता, शिक्षा और मानवीय मूल्य जो है उनके पुनर्निर्माण से जुड़ा हुआ है। आज का युग सूचना और संचार का युग है, सभी बोलते हैं, मानते हैं, दुनिया बहुत छोटी हो गई है, यह भी हमने देखा है। एक स्थान पर घटी घटना कुछ ही क्षणों में पूरे विश्व तक पहुंच जाती है। ऐसे समय में मीडिया केवल समाचार देने का माध्यम तो नहीं रहा, बल्कि यह समाज की सोच, दिशा और दशा ये भी तय करने वाला एक प्रभावशाली शक्ति बन चुका है, ऐसा अपन कह सकते हैं। इसीलिए यह कहना उचित होगा कि यदि आप मीडिया चाहे तो वो समाज को विभाजित भी कर सकता है और संकल्प ले तो समाज को एकजुट भी कर सकता है। पत्रकार को आने में तो वैसे मतलब पत्रकार लोग जो कहते हैं वो थोड़ा सा एक दो लाइन में कह दूं, मैं तानो बानो के शब्दों की बौछार हूं, मैं तानो बानो की शब्दों की बौछार हूं मैं, जी जनाब खूब पहचाना पत्रकार हूं मैं, पत्रकार हूं मैं। वास्तव में तानो बानो के शब्द हम लेके चलते हैं, इसको भी हम आगे देखेंगे। मीडिया का वास्तविक अर्थ जो है, तो मीडिया शब्द सुनते ही हमारे सामने समाचार पत्र आते हैं, टीवी चैनल आता है, रेडियो, सोशल मीडिया, वेब पोर्टल, डिजिटल जितने प्लेटफॉर्म है वो आते हैं। लेकिन वास्तव में मीडिया केवल साधन नहीं है, बल्कि यह विचारों का सेतु, जन भावनाओं का दर्पण और परिवर्तन का माध्यम है। मीडिया समाज में जागरूकता लाता है, समस्याओं को उजागर करता है, सत्ता को जवाबदेह बनाता है और आम जनता की जो आवाज है उसको मंच प्रदान करता है। और फिर वापस मुझे दो लाइनें याद आती है कि हर दिन सुबह सस्ते हैं, मेज पर पड़े दर्द के गुलदस्ते हैं, और सब लिखते हैं छपने के लिए, और हम लिखते हैं जमाने को बदलने के लिए, हम लिखते हैं जमाने को बदलने के लिए। इस समझ के साथ जो मीडिया में काम करता है उसका पूरा समाज भी उसकी, मतलब हम बोलते हैं उसकी दखल लेता है। तो आज समाज जो समस्याओं से जूझ रहा है उसको थोड़ा देखेंगे तो ख्याल में आएगा कि नैतिक मूल्यों का ह्रास है, परिवारों में विघटन है, तनाव और अवसाद है, हिंसा और अपराध है, नशा, भ्रष्टाचार, पर्यावरण संकट, जातीय, धार्मिक और सामाजिक विभाजन, भ्रामक सूचना और अफवाहों का प्रसार, ये सब बातों से समाज आज इन समस्याओं से जूझ रहा है। इन चुनौतियों के बीच समाज को एक नई दिशा, नई सोच और नई व्यवस्था देने की आवश्यकता है। ऐसी व्यवस्था जिसमें शांति हो, जिसमें सहयोग हो, समानता हो, नैतिकता हो और मानवीय संवेदना भी होना बहुत जरूरी है। नई सामाजिक व्यवस्था क्या होगी? जब हमने सब्जेक्ट को लिखा है कि नई सामाजिक व्यवस्था के लिए उत्प्रेरक मीडिया, तो नई सामाजिक व्यवस्था क्या है? नई सामाजिक व्यवस्था का अर्थ केवल नई तकनीक या आधुनिक भवन नहीं है, इसका अर्थ है मूल्यों पर आधारित जीवन शैली, महिला और पुरुष का समान सम्मान, शिक्षा और संस्कार का संतुलन, आर्थिक प्रगति के साथ नैतिक उन्नति, स्वच्छ राजनीति और उत्तरदायी प्रशासन, पर्यावरण के प्रति संवेदनशील समाज और आध्यात्मिकता से युक्त जीवन दृष्टि, प्रेम, शांति, सह अस्तित्व पर आधारित मानव परिवार, ऐसी सामाजिक व्यवस्था का निर्माण केवल कानून से नहीं हो सकता। इसके लिए जनमानस की सोच बदलनी होगी और यह सोच बदलने का काम मीडिया ही कर सकता है। इसीलिए सच को दिखाना होगा, जो दिखता है वही सच नहीं होता हर बार। एक शायर कहता है कि जो दिखता है वही सच नहीं होता हर बार, मीडिया की जिम्मेदारी है कि दिखाना है असली किरदार, कि मीडिया की जिम्मेदारी है दिखाना है असली किरदार। तो असली बातें, सच की बातें हमको मीडिया को दिखानी है और ये जो सामाजिक व्यवस्था है इसके लिए हमको काम करना है। अब मीडिया उत्प्रेरक कैसे बन सकता है? किसी ने कहा कि हम उत्प्रेरक कैसे बने, तो उत्प्रेरक वो जो तत्व है वो परिवर्तन की गति को तेज कर देता है और मीडिया समाज परिवर्तन का ऐसा ही उत्प्रेरक है। हम इसके लिए 6 पॉइंट यहां पर देखेंगे। उसमें है जन जागरण का माध्यम मीडिया। तो मीडिया समाज को शिक्षित कर सकता है, स्वस्थ, स्वच्छता, शिक्षा, मतदान, पर्यावरण, महिला सुरक्षा, नशा मुक्ति ऐसे विषयों पर प्रभावी अभियान चलाकर समाज में चेतना ला सकता है। मीडिया बहुत कुछ कर सकता है, बहुत बड़ा काम है मीडिया के पास। सकारात्मक समाचारों को बढ़ावा देना, सेकंड पॉइंट। तो आज अधिकतर समाचार नकारात्मकता, भय और सनसनी पर केंद्रित होते हैं। यदि मीडिया समाज में हो रहे अच्छे कार्यों को, प्रेरणादायी व्यक्तित्व को, नवाचारों को और सेवा कार्यों को सामने लाए तो लोगों में आशा और प्रेरणा बढ़ेगी। पॉइंट नंबर 3, मूल्यनिष्ठ पत्रकारिता, जिसका ब्रह्मा कुमारी पिछले 27 साल से हम सभी मीडिया वालों के लिए आग्रह करते रही है। तो मूल्यनिष्ठ पत्रकारिता, पत्रकारिता का उद्देश्य केवल TRP या व्यावसायिक लाभ लेना नहीं है, सत्य, निष्पक्षता और जनहित पत्रकारिता के मूल आधार होने चाहिए। और जब मीडिया मूल्यनिष्ठ बनेगा तब समाज मूल्यनिष्ठ बनेगा। अब कोई क्या कहे कि पहले समाज मूल्यनिष्ठ बन जाए तब तो मीडिया बने, ये अंडा पहले या मुर्गी पहले वाली बात, ऐसे नहीं है। मुझे एक यहां पर एक घटना याद आती है, थोड़ा 2 मिनट और लूंगा मैं आपके, कि राज कपूर ने एक फिल्म बनाई थी, उस फिल्म का नाम था श्री 420 और वो बॉक्स ऑफिस पर पीट गई थी, चली नहीं फिल्म। उसके बाद में पत्रकारों की एक सभा हुई और राज कपूर को वो पत्रकारों ने कहा कि अब आपको फिल्म बनाना नहीं आती, आप बराबर फिल्म नहीं बना पाए, आपकी फिल्म फेल हो गई है करके, बॉक्स ऑफिस पर फिट गई है करके। तो राज कपूर ने कहा ठीक है, मैं अगली फिल्म में होने के बाद में आपके साथ मिलूंगा। अगली फिल्म राजकुमार ने बनाई, राज कपूर ने बनाई बॉबी, नई हीरोइन ली उसके अंदर, और उसके अंदर गाना था हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए, और वो फिल्म सुपरहिट हुई। बाद में पत्रकारों को बुलाया राज कपूर ने और कहा कि देखिए ये फिल्म नहीं है, इसमें हीरोइन भी नहीं है, और ये फिल्म बहुत ज्यादा चली है, सक्सेस हो गई है, लेकिन लोगों को क्या देना है ये मुझे मालूम है, लेकिन उसको कितने परसेंटेज में देना चाहिए, ये फिल्म में जो कुछ भी मैंने दिया है वो समाज को देने के लायक नहीं है, लेकिन ये फिल्म सुपरहिट हो गई है। तो कहने का मतलब ये है कि समाज जो मांगता है वो हमको परोस दे, ऐसा मीडिया करता है तो गलत करता है। जो समाज के हित में हो, जो समाज को देना योग्य हो, जो समाज का आरोग्य स्वास्थ्य अच्छा रख सकता है, ऐसी ही बातें मीडिया को देनी चाहिए, ये हमको यहाँ पर मतलब समझ में आता है। युवाओं को दिशा देना पॉइंट नंबर 4, युवा शक्ति राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत है, मीडिया यदि युवाओं को हिंसा दिखावे और भ्रम की बजाय कौशल, उद्यमता, राष्ट्र निर्माण, सेवा और आत्मविकास की प्रेरणा दे तो नई पीढ़ी समाज को नई दिशा दे सकती है। 5, सामाजिक संवाद का मंच, मीडिया समाज के विभिन्न वर्गों, सरकार, जनता, विशेषज्ञों, किसानों, मजदूर, महिलाओं, युवाओं का संवाद का मंच दे सकता है, संवाद से समाधान निकलता है। नंबर 6, लास्ट, डिजिटल मीडिया की सकारात्मक शक्ति, आज सोशल मीडिया हर व्यक्ति के हाथ में है, हर व्यक्ति स्वयं मीडिया बन गया है, यदि इसका सदुपयोग ज्ञान साझा करने, सद्भाव फैलाने, सेवा कार्यों का प्रचार और प्रेरणादायक सामग्री के लिए करे तो यह अद्भुत परिवर्तन ला सकता है, और मीडिया बहुत अच्छे ढंग से विश्वास लायक बन सकता है। किसी ने कहा था कि संगीत सुनकर ज्ञान नहीं मिलता, मंदिर जाकर भगवान नहीं मिलता, पत्थर तो इसलिए पूजते हैं लोग कि विश्वास के लायक इंसान नहीं मिलता, विश्वास के लायक इंसान नहीं मिलता, तो विश्वास के लायक मीडिया भी नहीं मिलता, ऐसी परिस्थिति हमारी आज देश में है, तो वो हमको चेंज करनी पड़ेगी। और मीडिया की जितनी बड़ी शक्ति जिम्मेदारी है उतनी मीडिया के सामने भी चुनौतियां है, फेक न्यूज है, सनसनीखेज प्रस्तुति है, पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग है, और टीआरपी की दौड़ है, नकारात्मकता का अत्यधिक प्रसार है, निजी जीवन में अनावश्यक हस्तक्षेप है, सोशल मीडिया पर बिना सत्यापन सामग्री फैलाना है, ये जो चुनौतियां है इसको सभी को पार करते हुए मीडिया आगे चल सकता है। समय हो गया क्या? बस 2 मिनट में पूरा। हाँ, यदि इन चुनौतियों पर नियंत्रण किया गया तो मीडिया समाज निर्माण के बजाय समाज विघटन का कारण भी, नियंत्रण नहीं किया गया तो समाज विघटन का कारण भी बन सकता है। अब मैं आपको समाधान की ओर लेके जाता हूँ, बहुत डिटेल हो जाएगा तो ये रोक देंगे। समाधान क्या है? मीडिया को चाहिए कि सत्य आधारित रिपोर्टिंग करे, सकारात्मक और रचनात्मक दृष्टिकोण रखे, समाज हित सर्वोपरि रखना है, संवेदनशील पत्रकारिता करना है, राष्ट्र निर्माण की भावना रखना है, आध्यात्मिक मूल्यों का समावेश करना है, और ऐसा हम करते हैं तो समाज से भी कुछ अपेक्षाएं हैं। समाज को क्या चाहिए? तो समाचारों का विवेकपूर्ण चयन हो, अफवाहों से समाज को बचना चाहिए, सकारात्मक सामग्री को बढ़ावा देना है, और जिम्मेदार डिजिटल नागरिक बनना है, और लास्ट में हम जिस संस्था में यहाँ बैठे हैं उससे मीडिया को हम जब बात करते हैं कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से मीडिया कैसे हो, क्योंकि मीडिया के बारे में बहुत अच्छा नहीं बोला जाता। ऐसा कहते हैं कि छोटी सी जिंदगी तकरार किस लिए, छोटी सी है जिंदगी तकरार किस लिए, रहते हैं दिलों में दीवार किस लिए, रहती है दिलों में दीवार किस लिए, है साथ कुछ दिनों का फिर जुदा जुदा, है साथ कुछ दिनों का फिर जुदा जुदा, राह में हम कांटे बिछलाए किस लिए, राह में हम कांटे बिछलाए किस लिए। तो राह में कांटे बिछलाने वाला मीडिया नहीं होना चाहिए, ऐसी अपेक्षा है। और यदि मीडिया केवल बाहरी घटना को प्रसारण करे, आंतरिक मूल्यों को भूल जाए तो परिवर्तन अधूरा रहेगा। आज आवश्यकता है इन्फॉर्मेशन से इनर ट्रांसफॉर्मेशन की, और मीडिया यदि मनुष्यों को आत्मचिंतन, ध्यान, तनाव मुक्ति, नैतिक जीवन, पारिवारिक संस्कार, शांति और आत्मसम्मान की दिशा दिखाए तो वह सच्चे अर्थों में समाज निर्माता बन सकता है। ऐसे मीडिया की बहुत सारी बातें हैं, मैं लास्ट में इतना ही कहूंगा कि आइए हम सब मिलकर ऐसे मीडिया का निर्माण करें जो नई सामाजिक व्यवस्था का उत्तरक बने, जहां मानवता हो, जहां नैतिकता हो, शांति हो और विश्व कल्याण की भावना हो। अंत में 4 लाइनें, मीडिया अगर ईमानदार हो तो समाज सवर जाता है, मीडिया अगर ईमानदार हो तो समाज सवर जाता है, झूठ का साथ दे तो विश्वास बिखर जाता है, कलम की ताकत को पहचानो और सही दिशा में चलाओ, क्योंकि यही भविष्य का नया समाज बनाता है, क्योंकि यही भविष्य का नया समाज बनाता है। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राजेश राजौरे सर को, जिन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से विषय पर प्रकाश डाला। और हम अगर ये कहें कि
गागर में सागर को समा दिया। आपने बहुत सारे पहलुओं पर बहुत ही गहराई से प्रकाश डाला, आपने कारण भी बताया और उसके निवारण भी बताए। मुझे इससे जुड़ी हुई एक बात याद आती है, कहते हैं कि सब में हो सहयोग भावना, सब में हो सहयोग भावना, सब दें सबको प्यार और सब चाहें तो सबके लिए हो सुखमय ये संसार। तो वास्तव में यही बात आपकी वक्तव्य से झलकती है कि हर व्यक्ति अपनी जिम्मेवारियों का सही रीति से निर्वहन करे। उन्होंने एक बहुत सुंदर फिल्म का उदाहरण देकर भी बताया राज कपूर जी का, कि किस तरह से कौन सी फिल्म बनाई तो नहीं चली और फिल्म में क्या डाला, कौन सी कंटेंट को शामिल किया तो वो फिल्म को सफलता मिली। तो ये बात सही है कि समाज क्या चाहता है वो हमें अपनी जिम्मेवारी के साथ उसको परोसना है। ऐसा नहीं है कि जो ज्यादा कंटेंट देखा जा रहा है या जिससे टीआरपी ज्यादा मिल रही है या जिससे हमारे उसकी व्यू ज्यादा बढ़ रहे हैं हमें वो कंटेंट देना, मुझे लगता है कि ये हमारी नैतिक जिम्मेवारी का उल्लंघन है। मुझे इससे बचना चाहिए। समाज हमारा है और इसको ठीक रखना, इसको सही दिशा देना हम सबकी मूल जिम्मेवारी है, नैतिक जिम्मेवारी है और इसका हम सभी को पालन करना चाहिए। तो निश्चित ही हम जो है सुंदर समाज का जो है निर्माण कर सकेंगे। तो पुनः डॉक्टर राजेश राजौरे सर को बहुत धन्यवाद। और अभी हम इसी क्रम में हमारे आज के जो गेस्ट ऑफ ऑनर हैं उनको माफी चाहूंगा, भाई साहब आ गए हैं मैं देख नहीं पाया। मैं आदरणीय मोहन सिंघल भाई साहब को आग्रह करता हूं कृपया मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करें, जो हमारे आज के इस कार्यक्रम के चेयरपर्सन हैं। हम हमारी बहनों को आग्रह करते हैं भाई साहब का बैज और पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। सभी एक बार जोरदार ताली बजा करके भाई साहब का स्वागत अभिनंदन करेंगे। हमारे बीच में आदरणीय मोहन सिंघल भाई साहब और हमारे बीच में सुमन दीदी, आदरणीय बीके सुमन दीदी जी पहुंची, आपका भी तहे दिल से स्वागत अभिनंदन है। बहनों से आग्रह करते हैं हमारे दोनों ही सम्मानित अतिथियों को पुष्पगुच्छ से बैज और अंगवस्त्र पहना करके स्वागत अभिनंदन करेंगे। और हमारे बीच में सर पहुंचे हैं आदरणीय ब्रदर शंकर भाई साहब, उनका भी स्वागत अभिनंदन है जो कि दिशा गुजरात से हैं। मैं बहनों से आग्रह करूंगा कि आदरणीय शंकर जो है कटीरा भाई साहब का भी स्वागत करें, पुष्पगुच्छ और अंगवस्त्र पहना करके बैजेस से स्वागत अभिनंदन करें। अभी मैं अगली कड़ी में जो है आमंत्रित करना चाहूंगा एक और बहुत ही प्रखर वक्ता कहें, अनुभवी वक्ता कहें, जिन्होंने प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों ही जगह पर अपनी एक अलग पहचान बनाई है, जिनका अपना व्यक्तित्व बहुत ही प्रेरणादायी है। कल मैं जब शाम को आपसे मिल रहा था तो कई सारे विषयों पर आपसे चर्चा हुई और आपसे सुनने पर मिला कि आपकी जो कार्यशैली है निश्चित ही वो शासन प्रशासन को तो कहीं ना कहीं प्रेरित करती है और आम नागरिकों को भी प्रेरित करती है। मैं ऐसे ही सम्मानीय डॉक्टर श्री विशाल यादव भाई साहब जो कि बहुत सारे प्रिंट मीडिया में अपनी सेवाएं दे चुके हैं, जिसमें चौथा संसार, दैनिक भास्कर पत्रिका, न्यूज टुडे, महानगर प्लस मैगजीन, दबंग दुनिया, दूरदर्शन जैसे हाई लैंड डेली न्यूज पेपर में आपने अपनी सेवाएं दी हैं और वर्तमान में अनटोल्ड स्टोरी मैगजीन और जनमंत्रा.com के आप संपादक हैं और पिछले 20 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं, अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आपने पत्रकारिता में नक्सलवाद और विधानसभा राजनीति जैसे विषयों पर लंबे समय का आपका एक बहुत ही सुंदर अनुभव रहा है। आपकी एक किताब भी प्रकाशित हुई है जिसका टाइटल था नरक, मानव तस्करी पर बनी हुई है किताब, बहुत ही प्रेरक रही जिसने कई लोगों को सोचने समझने पर जो है मजबूर किया और बहुत ही सुंदर रीति से उसमें बताया गया है कि किस तरह से मानव तस्करी का जो चल रहा है और किस तरह से उससे जो है हम लोगों को अवेयर कर सकते हैं, जागरूक कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर आपकी किताब है। राजस्थान पत्रिका अखबार का उत्कृष्ट पत्रकार पुरस्कार से भी आपको सम्मानित किया गया। गोपी कृष्ण गुप्ता पत्रकारिता पुरस्कार से भी आपको सम्मानित किया गया। आपने अपने पूरे पत्रकारिता के जीवन काल में कई सारे राजनेताओं के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लिए हैं और राजनीति से जुड़ी कई बड़ी एक्सक्लूसिव खबरों को आपने ब्रेक किया है। तो ऐसे ही महान और अनुभवी व्यक्तित्व आज हमारे बीच में है। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्री विशाल यादव जी को, आप आए और संबंधित विषय पर अपने विचार रखें। श्री विशाल यादव जी।
धन्यवाद प्रहलाद भाई जी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सम्मानित मंच और यहाँ उपस्थित मेरे सभी साथी, प्रहलाद भाई जी ने बहुत सारा जादू बता दिया है। आज जब सामाजिक नवीन सामाजिक व्यवस्था में पत्रकारिता की भूमिका की बात होती है तो हमारे सामने कई चैलेंज भी आते हैं। जो लोग फील्ड में काम करते हैं मैं उन साथियों को अच्छे से समझता हूं, वो भी उन चैलेंजेस को समझते हैं कि नित नई जब खबरें से दो चार होते हैं तो व्यवस्थाओं से भी उनको दो चार होना पड़ता है। सबसे पहले तो अपने ऑफिस की व्यवस्थाओं से दो चार होना पड़ता है, उसके बाद खबर जब ढूंढने जाते हैं तो उससे दो चार होना पड़ता है, क्योंकि कठिनाइयों से एक रिपोर्टर को बड़ी कठिनाई से खबर मिलती है और वो खबर जब वो अपने संपादक तक लाता है उसके बाद उसकी सर्जरी शुरू होती है और उस खबर की हत्या होगी या वो खबर लोगों के प्रेरणादायी जीवंत उदाहरण बनेगी ये वहीं तय होता है। सामाजिक व्यवस्था के जब बात होती है तो पत्रकारों की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो ऐसी खबरें दें जो समाज के लिए उदाहरण बने। ज्यादा समय नहीं लूंगा, दो एक उदाहरण आपके सामने पेश करूंगा। पहला उदाहरण है राजस्थान के एक बहुत ही बड़े जर्नलिस्ट हुए हैं, मैं उनको नमन करता हूं। उनकी एक खबर थी, एक ठेले चलाने वाला एक व्यक्ति था जो अपनी बेटी को भरी गर्मी में अपने साथ लेके जा रहा था और ठेला चला रहा था। जो हमारे सामान्य पत्रकार थे उन्होंने उसको ऐसे ही जाते हुए देखा और उत्सुकतावश उनसे पूछा कि भाई तुम अपनी बेटी को लेके इतनी कड़ी धूप में जा रहे हो, क्या है, क्या परेशानी है? तो उन्होंने बताया कि इसकी माँ का कुछ समय पहले देहांत हो गया है और ये गंभीर बीमारी से परेशान है और उसका इलाज का खर्च बहुत ज्यादा हो रहा है, जो मैं कहीं से मैं मदद भी जो नहीं मिल रही है और वो करा नहीं पा रहा हूं, इसलिए जितना भी मुझसे हो सकता है मैं अपनी कोशिश कर रहा हूं अपनी बेटी के लिए। तो देखिए खबर का जो असर है वो आप इसे और मर्म को समझिएगा। उन्होंने इस खबर को प्रकाशित किया, खबर प्रकाशित हुई, पूरे देश में इस खबर को लेकर चर्चा हुई और इस खबर के आने के बाद ये ढूंढा गया कि उसकी मदद कैसे की जाए। ना तो उसके पास कोई अकाउंट था उस बच्ची का, ना ही कुछ वो था। जो जर्नलिस्ट थे उन्होंने वापस अप्रोच किया और अगले दिन उस बच्ची के अकाउंट में आप विश्वास नहीं करेंगे 1.5 करोड़ रुपए की सहायता राशि प्राप्त हुई। उसकी मदद के लिए पूरे देश से 1.5 करोड़ रुपए की राशि मिली और ये खबर लिखने वाले कोई और नहीं, स्वर्गीय नारायण बारेठ जी थे जो बीबीसी में रहे हैं। 1.5 महीने पहले ही उनका देहांत हुआ, इस मंच से मैं उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ऐसी सामाजिक व्यवस्था को देने वाली खबरें मुझको लगता है अगर हर पत्रकार जीवन में एक बार कर ले तो हर एक व्यक्ति का जीवन वो संवार सकता है। एक स्टोरी जब हमने की, अभी प्रहलाद भाई जी ने जब हमको बताया, कल हमारी चर्चा हो रही थी प्रहलाद भाई जी से, तो हमारी जो किताब का जिक्र उन्होंने किया प्रहलाद भाई ने नरक का, उसकी एक जो हीरो थी, हम कहते हैं हीरो राजेश्वरी सलाम, या मैंने उस किताब को, मैंने और मेरी वाइफ ने दोनों ने मिलकर रखा, प्रियंका लिखा है, प्रियंका वहां है। तो राजेश्वरी सिर्फ तीसरी तक पढ़ी हुई थी, नक्सल प्रभावित इलाके की बेटी थी। उसको जब ट्रैफिकिंग के जरिए आंध्र प्रदेश की एक फैक्ट्री में ले जाके बंद कर दिया गया, उसके साथ 69 और लड़कियां थी और ये 69 लड़कियां एक बहुत छोटे से कमरे में रहती थी, एक ही उनके लिए उपयोग के लिए एक वॉशरूम था। लेकिन वो जो राजेश्वरी सलाम थी, वो राजेश्वरी सलाम तीसरी पढ़ी हुई लेकिन थोड़ा सा समझदार थी, उसको वहां पे एक विजिटिंग कार्ड मिला। वो कार्ड फटा हुआ था, कार्ड में थोड़ा बहुत जो दिख रहा था वो उसने संभाल के रखा हुआ था। जो एजेंट उनको वहां लेके गया था, उस एजेंट को, वो एजेंट बार बार लड़कियों को वहां लेके आता था और फैक्ट्रियों में वो उनसे काम कराया करते थे, एक बार वो एजेंट फिर आया तो उसने उसे विनम्रता से बात की कि मैं वापस चलती हूँ और लड़कियां भी मेरे साथ लेके आऊंगी। एक देखिए वो कितनी समझदार थी कि एक बार वो वहां से अगर बाहर निकलती तो वो मदद के लिए लोगों को बुला सकती थी। उसने वैसे ही किया, एजेंट को विश्वास में लिया, वो एजेंट वापस आया और वो लड़की वहां बाहर आई, पुलिस और जो और भी जो प्रशासनिक लोग थे उनसे मिलती रही। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना उसकी कोई मदद नहीं हुई। फिर एक दिन वहीं जब एक सामाजिक कार्यकर्ता थी उन्होंने उसकी मदद की, उसके बाद हमको भी खबर लगी, हमने भी थोड़ा सा उसमें आगे बढ़ के इनिशिएटिव लिया और वो लड़की आप यकीन मानिए 69 लड़कियों को आंध्र प्रदेश से छुड़ा के लेके आई। क्या वो हमारी पुस्तक की हीरोइन थी और ऐसी रियल स्टोरी को हमने उसमें लिखा और उस पुस्तक का विमोचन विधानसभा में किया। और एक और उदाहरण, विधानसभा अध्यक्ष जो उस समय डॉक्टर चरणदास महंत थे, उन्होंने उस लड़की को आधे घंटे में सरकारी परमानेंट नौकरी दी और वो आज लड़की सरकारी परमानेंट नौकरी कर रही है पैराल भाई की। उस किताब की ये उपलब्धि थी। तो सामाजिक सरोकार की जब खबरें हम स्वयं एक इनिशिएटिव लेके जब आगे बढ़ते हैं करते हैं तो हमें नए नए रास्ते मिलते जाते हैं। और मुझको लगता है यहाँ जितने भी लोग हैं आज जिस जगह पे हम इकट्ठा हुए हैं, जहाँ पे हम लोग हैं, वहाँ आपको सरलता, शांति, सामाजिक भाईचारा, विश्वास, आत्मीयता, इन सब का बहुत सारा बैलेंस मिलता है जो आपको जीवन में नए आयाम खड़े करने, नए प्रेरणा देने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो मेरा आपसे यही निवेदन है, लगातार यहाँ आते रहिए और यहाँ से जो आपको जो कुछ भी खजाना मिलता है क्या उसको अपने अंदर उतारिए और एक बेहतर समाज के लिए एक अच्छी पत्रकारिता की नई मिसाल पेश कीजिए। धन्यवाद भाई साहब।
बहुत धन्यवाद विशाल जी को, जिन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से अपनी उस पुस्तक का भी जिक्र किया और बताया कि किस तरह से जब विचार में शक्ति आती है, कहते हैं विचारों की शक्ति जब आती है तो हर सोच एक नई क्रांति बन जाती है। और आपने जो पुस्तक लिखी है निश्चित ही वो पुस्तक से आप देखें, उन्होंने अपनी उपलब्धि भी बताई कि किस तरह से जो है उस बच्ची को जो तीसरी क्लास पढ़ी है और उसकी समझ देखिए, वो अपनी समझ से कितनी सारी बच्चियों को उसने वहां से मुक्त कराया और बाद में शासन ने भी उसको जो है एक अच्छे सम्मान देकर उसको सम्मानित किया। तो ये है विचारों की शक्ति। और पुनः मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं और इसी क्रम में मैं अभी आमंत्रित करने जा रहा हूं हमारी सम्माननीय बहन आशा निवेदी जी को, जो कि न्यूज सर्विस डिवीजन से हैं, ऑल इंडिया रेडियो से हैं, हमारे बीच में हैं। आपका स्वागत है, आप कृपया आएं और अपना वक्तव्य रखें। आपके बारे में मैं बताना चाहूंगा, आपका एक ऐसा व्यक्तित्व है जिन्होंने अपने कार्य और समर्पण से एक विशिष्ट पहचान जो है अपनी बनाई है। आप दिल्ली से हैं, इन्होंने पटना विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए की शिक्षा प्राप्त की और वर्ष 1984 में केंद्रीय सरकार की सेवा में कदम रखा और आकाशवाणी गोरखपुर में एक स्थायी अनाउंसर के रूप में अपनी सेवाएं प्रारंभ की। इसके पश्चात वर्ष 1996 में अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित लिखित परीक्षा का ऑडिशन और साक्षात्कार को सफलतापूर्वक उत्तीर्ण किया और आकाशवाणी नई दिल्ली में समाचार सेवा प्रभाग में हिंदी समाचार वाचक, हिंदी न्यूज रीडर के रूप में कार्यभार संभाला। और आप वर्तमान में सेवानिवृत्ति के बाद भी उनका कार्य के प्रति समर्पण निरंतर बना रहा। वर्तमान में वे उसी कार्यालय में अनुवाद व संपादन कार्य से जुड़ी हुई हैं और अपनी सेवाएं निरंतर प्रदान कर रही हैं। ऐसी बहुमुखी प्रतिभा की धनी आदरणीय आशा निवेदी जी को मैं आमंत्रित करता हूं, कृपया आएं और संबंधित विषय पर अपना वक्तव्य रखें। बहन निवेदी जी।
ओम शांति। मीडिया बिरादरी के समस्त सहोदर सहकर्मियों को मेरा नमस्कार और यहाँ इस पावन संस्था को समर्पित जितने भी आस्थावान दिव्यात्मा भ्राता और भगिनी हैं उन सबको प्रणाम। सबसे पहली बात जो मैं महसूस कर रही हूँ वो ये कि इस परिसर में आने के बाद कुछ भी कहना, कुछ कहने का दायित्व संभालना एक बहुत ही दुरूह और बहुत ही दुष्कर कार्य हो जाता है, बहुत कठिन प्रतीत होता है। वो क्यों? क्योंकि यहां प्रवेश करते ही जो पहली प्रतिक्रिया होती है वो एक शब्दों पर मौन का पहरा लग जाता है। आप बिल्कुल निःशब्द हो जाते हैं, बस महसूस करने लगते हैं आप। और उस निःशब्द मौन में जब आप अपने अंदर की गहराइयों में उतरते हैं तो एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है। बिल्कुल मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ, और मुझे लगता है कि यही वो दिव्य शांति है जिसकी खोज के लिए इस कार्यशाला का या इस सेमिनार का या जो बोले इसको, है ना, कॉन्फ्रेंस का, सम्मेलन का, महासम्मेलन का आयोजन किया गया है। यही वो दिव्य शांति है जिसकी खोज में हम सभी हैं। और मेरा मानना है कि आप सबको भी ऐसा महसूस जरूर हुआ होगा। जो अनुभूति मैंने की वो हो सकता है मुझसे ज्यादा आपको हुई हो या मुझसे थोड़ी कम हुई हो, लेकिन हुई जरूर होगी। और मेरा ये विश्वास है कि निर्दोष लोगों का खून बहाने वाले जो आतंकवादी हैं उनको, और किसी भी मोर्चे पर जो शत्रु देश की सेनाएं खड़ी होती हैं उनके सैनिकों को, उनके राष्ट्राध्यक्षों को, उनके शासनाध्यक्षों को यदि इस परिसर में लाकर छोड़ दिया जाए तो वो भी बिल्कुल निर्विकार और बिल्कुल निरुत्तर हो जाएंगे। कोई जवाब नहीं होगा उनके पास कि ये आपाधापी, ये हिंसा, ये खून खराबा वो क्यों कर रहे हैं। इस बात का जवाब उनके पास शायद नहीं होगा। और ये एक अभिनव प्रयोग होगा अगर हम इसे ऐसे लोगों तक जो विस्तार की राजनीति में लगे हैं, विस्तारवाद के हवस में लगे हैं, उन तक हम पहुंचा सकें तो ये एक बहुत बड़ी बात होगी। आज हमारा जो सम्मेलन है और जो इसका सत्र है, इसका विषय है मीडिया एज ए कैटलिस्ट फॉर ए न्यू सोशल ऑर्डर, मीडिया नई समाज व्यवस्था के लिए उत्प्रेरक के रूप में। मीडिया की शक्ति क्या है, मीडिया की ताकत क्या है, इससे हम सभी अच्छी तरह से परिचित हैं। और हम पत्रकार बंधु जो जर्नलिज्म के काम में लगे हैं किसी न किसी माध्यम से, हम सभी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि मीडिया की ताकत क्या है और कितनी शक्ति है इस माध्यम में। अभी बहुत दिनों की बात नहीं हुई है, कुछ वर्षों की ही बात हुई होगी, अभी आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, ये अभियान शुरू हुआ, और इस अभियान का लोगों की सोच पर, जनमानस पर क्या असर पड़ा, इससे भी आप बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं। और लड़कियों को अपने परिवार में, घर में लक्ष्मी की तरह उसका स्वागत किया जाने लगा, जिन परिवारों में ऐसा नहीं होता था वो भी इस काम में आगे बढ़ाए। इसके बाद एक बालिका वधु एक सीरियल चला, आपको याद होगा, अच्छी तरह से याद होगा। इस सीरियल ने जो बाल विवाह के प्रति जनमानस को जगाया और उसके खिलाफ एक बहुत बड़ी शक्ति खड़ी कर दी। जहां भी ये दोष, अभी ये कुरीति बरकरार थी, विद्यमान थी, उस पर चोट लगाई इसने और उसको रोकने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। इसी तरह उड़ान नाम से भी एक सीरियल इससे भी पहले आया करता था, जिसमें महत्वाकांक्षा का जिक्र था कि कैसे महत्वाकांक्षा हम हासिल कर सकते हैं, लड़कियां कहां से कहां तक पहुंच सकती हैं। और बिल्कुल अभी हाल फिलहाल की बात लीजिए, तीन चार पांच वर्षों पहले की, कोविड महामारी के दौरान, कोविड के दौरान मीडिया ने क्या भूमिका निभाई, ये आपसे छिपी हुई नहीं है। और मीडिया के प्रयासों से, उसके एहतियाती उपायों के बार 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 कहने से, दोहराने से कितने लोगों की जान बचाई जा सकी और हमने इस महामारी पर जीत हासिल की। कोई भी जब नई बात मीडिया उठाता है तो पहली बार वो दस्तक आपके विचारों पर पड़ती है और उसके बाद वो दस्तक बार बार दोहराई जाकर एक आपका, यूं कहिए कि आपकी आदत बन जाती है, आपकी मान्यता बन जाती है, और आप उस मान्यता को अपनाने को बिल्कुल बाध्य हो जाते हैं, स्वेच्छा से अपनाते हैं। बाध्य शब्द भी शायद सही नहीं होगा, आप स्वेच्छा से अपनाना चाहते हैं उसको। तो ये एक बहुत बड़ी ताकत है मीडिया की, और आप पत्रकार बंधु इस बात के लिए गौरव मानिए अपना कि आप बहुत ही भाग्यशाली हैं, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम इस पेशे से, इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, इस प्रोफेशन से हम जुड़े हुए हैं, हम बहुत भाग्यशाली हैं। यहां हम पैसों के लिए नहीं आए हैं, पैसा बहुत ही हमारे लिए बहुत ही पीछे की चीज है, यहाँ हम जिस संतुष्टि के लिए आए हैं, जनहित समाज हित की संतुष्टि के लिए, वो संतुष्टि पूरी करने में ये माध्यम, ये पेशा, ये व्यवसाय बहुत बड़ा साथ देता है, बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। अभी कल के सत्र में ही मैंने अरुण जी से इस बात का जिक्र किया था, उनको साधुवाद दिया था कि आपने इस मंच पर खड़े होकर ये बात उठाई कि जिनको पैसे कमाने हो वो किसी और व्यवसाय में भी जा सकते हैं, पत्रकारिता में आने की जरूरत नहीं है। मैंने उनको साधुवाद दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने इस बात को इस सशक्त मंच से उठाया। अगर पैसा सिर्फ कमाना हो तो आप किसी भी व्यवसाय में जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको समाज की सेवा करना हो, जनता की सेवा करनी हो, तब आप इस व्यवसाय में अपने को रखकर बहुत भाग्यशाली समझिए। तो जिस नई सामाजिक व्यवस्था की बात हम कर रहे हैं, जिस नई सामाजिक व्यवस्था को लाने की, उसे एक दिशा देने की बात कर रहे हैं, उस दिशा देने का काम इस माध्यम से सबसे सशक्त ढंग से हो सकता है। मैं बिल्कुल अपने करियर की बात अगर याद करूं, जैसा कि अभी बतलाया प्रहलाद जी ने, मैंने 1984 में आकाशवाणी गोरखपुर ज्वाइन किया था, उद्घोषिका के रूप में ज्वाइन किया था। काम शुरू करने के बाद दो प्रमुख कार्यक्रम मुझे मिले, एक तो था वंदना जो सुबह 6:30 बजे प्रसारित होता था, और दूसरा था फुलवारी कार्यक्रम जो 9:15 बजे सुबह प्रसारित होता था। तो वंदना कार्यक्रम, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, भक्ति गीतों का, भजनों का कार्यक्रम था, और उसको बीच में प्रभु को, ईश्वर को समर्पित 2-3 पंक्तियों से जोड़कर एंकरिंग करके वो कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाता था। नौकरी ज्वाइन करने की उम्र बहुत ही कच्ची और नई उम्र होती है, लेकिन पता नहीं क्यों उस उम्र में भी मेरा बहुत ही लगाव था, आध्यात्मिकता की ओर लगाव था, ईश्वरीय शक्ति की ओर लगाव था। तो जो भी 2-3 पंक्तियां मैं जोड़ती थी, तो जो पत्र आते थे कार्यक्रम के लिए आकाशवाणी में, उसमें जिक्र होता था कि उस आधे घंटे के प्रोग्राम को हम एक पूजा की तरह देखते हैं, और मैं पूजा में विश्वास नहीं रखता या नहीं रखती, लेकिन उस कार्यक्रम को सुनकर, उसको करते हुए बस पूजा करने का एहसास हो जाता है, अनुभूति हो जाती है कि उस आधे घंटे में हमारी पूजा संपन्न हो गई। और जो दूसरा कार्यक्रम था फुलवारी, वो जन समस्याओं से जुड़ा हुआ कार्यक्रम था, जिसमें हम क्षेत्रीय समस्याएं उठाते थे। क्षेत्रीय समस्याएं कहां की, जहां की, जो गोरखपुर का परिसर, जहां तक उस आकाशवाणी का रेंज, जहां तक उसका प्रसार था, वहां जहां तक वो सुनाई पड़ता था कार्यक्रम, वहां के श्रोता अपने क्षेत्र की समस्याएं उठाते थे। किसी ऑफिस में मैं गया और मुझसे रिश्वत मांगी गई, मेरी फाइल आगे नहीं बढ़ाई जा रही है, या कहीं पर मेरा ये काम नहीं हो रहा है, ट्रांसफार्मर खराब है, कितने दिनों से बिजली नहीं है, बहुत इसी प्रकार की समस्याएं होती थी। तो हम उस जो कार्यक्रम, जो भी उसको प्रस्तुत करता था, ज्यादातर मैं ही करती थी, तो उसको पढ़कर, उनकी समस्याओं को पढ़कर एक संबंधित गीत से हम उसको जोड़ दिया करते थे। किसी एक 2-3 समस्याएं पढ़ी, फिर एक अच्छा सा प्यारा सा गीत, जैसे राज कपूर की फिल्म का उन्होंने जिक्र किया, अनाड़ी फिल्म का, किसी की मुस्कुराहटों पर हो निसार, या इस तरह के गाने जो प्रेरणादायी गाने होते थे वो बजा दिए जाते थे। तो ये कार्यक्रम जब शुरू हुआ, उसके बाद आप यकीन नहीं मानेंगे कि 15-20 दिन के अंदर उसी श्रोता का पत्र आता था, बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी समस्या दूर हो गई, मेरी फाइल बिना रिश्वत के आगे बढ़ गई, मुझे उस ऑफिस से टेलीफोन आया, पत्र आया। तो मुझे ये लगा कि ये एक साधारण सा 15 मिनट का कार्यक्रम, अगर ये 2 लोगों की भी सेवा करता है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरी और आकाशवाणी की, जिसके माध्यम से ये प्रसारित हो रहा है। तो आप ये सोचिए कि आप इतने महान काम से जुड़े हुए हैं, अगर आप, आपकी वजह से 10 लोगों का भी भला होता है, आप 10 लोगों की भी समस्याएं उठा लेते हैं बिना किसी लाभ के, अपने हित में, बिना किसी स्वार्थ के, बल्कि मैं कहूंगी कि हम बिकाऊ नहीं हैं, हम बिल्कुल बिकाऊ नहीं हैं, हम बहुत ही महत्वपूर्ण चीज हैं। ईश्वर ने हमें जो चेतना दी है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और हमें जो दायित्व बोध दिया है वो उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो हम छोटे छोटे लाभों के बदले बिकने के लिए यहाँ नहीं आए हैं, हम उसको बिल्कुल ठोकर मार सकते हैं, हम अभाव में अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन अगर हमारे प्रयास से, हमारी निर्भीकता से, हमारे साहस से किसी भी 2 आदमी का भी भला होता है, तो समझिए ये आपके लिए इतनी बड़ी उपलब्धि है। जो किसी इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में तो नहीं लिखी जाएगी, लेकिन आपके मन में संतोष के रूप में अंकित होगी। आप हमेशा उसको याद करके गौरवान्वित होंगे। तो ये एक बहुत बड़ी भूमिका है आपकी, सभी मीडिया कर्मियों की, कि वो बिल्कुल निर्भीक होकर अपनी कलम, अपनी आवाज, इसकी ताकत से आगे बढ़ें और जन समस्याओं को उठाएं, उनके सरोकार, उनके निराकरण के लिए एक अपना सरोकार रखें और उसको प्रयास करें कि आपके माध्यम से क्या समस्याएं कहां पर हल हो सकती हैं। अभी दो दिन से ये सत्र चल रहा है, आज दूसरा दिन है, और यहाँ के ब्रह्म कुमारी संस्था के जो बंधु हैं, जो भ्राता भगिनी हैं, इन लोगों ने जिस तरह से हमारा स्वागत किया है, मुझे लगता है कि हम उसके पात्र नहीं हैं। इतना शब्दों से, नृत्य से, गीत से, एक एक शब्द में जैसे कलेजा निकालकर बिछा दिया हो रास्ते पर हमारे, इस तरह से स्वागत किया है। तो इनकी जो अपेक्षा है हमसे, उस अपेक्षा को हम साथ लेकर जाएं। जब हम यहाँ से लौटे तो यहाँ की वादियों में, यहाँ की घाटियों में कहीं वो रिस कर गिर ना जाए, याद रखिए, कहीं वो रीत ना जाए, वो आपके साथ आपके कार्यस्थल तक जाए, वहां तक जाए, और फिर आप उसको हमेशा याद रखकर एक ऋण चुकाने की नीयत से कि आपको इतना कुछ मिला है यहाँ से, तो हम इस अपेक्षा को पूरा करें जो इनके हित में नहीं है, समाज के हित में है, विश्व शांति के हित में है। ये जरूर प्रयास करें, मेरा आपसे बिल्कुल व्यक्तिगत विनम्र अनुरोध है, मतलब यहाँ के ब्रह्म कुमारी के अलावा मेरा भी आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप अपनी कलम की ताकत का इस्तेमाल जन समस्याओं के निराकरण के लिए करें, जरूर करें। और एक अनुरोध मैं कहना चाहूंगी इन भाई बहनों से कि आप शब्दों से या अपनी भावनाओं से जो हमारा स्वागत करते हैं ना, वो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है ना, और हमें किसी भी उपहार की आवश्यकता नहीं है। आप उस उपहार के लिए आप जो पैसे लगाते हैं ना, उन पैसों को किसी जनहित के कार्य में लगा देंगे तो हमें ज्यादा सुकून होगा। मेरे इस सुझाव पर विचार करें, संस्था अगर विचार करेगी तो मुझे कहने का दुस्साहस नहीं करना चाहिए, फिर भी मैं कह रही हूँ।
बहुत धन्यवाद आदरणीय बहन जी के लिए, जिन्होंने बहुत ही सुंदर शब्दों में अपनी बात रखी और बहुत अच्छा अनुभव भी अपना शेयर किया कि किस तरह से जब हम किसी की समस्या उठाते हैं तो निश्चित ही उसका समाधान होता है। और दूसरे शब्दों में अगर हम आध्यात्मिक शैली में कहें तो शब्दों में जादू होता है, आपके बोल में जादू होता है, आपके संकल्प में जादू होता है। अगर आप अच्छी सोच के साथ संकल्प करते हैं या अच्छा सोचते हैं, अच्छा बोलते हैं और निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करते हैं, तो उसके लिए कहते हैं कि ऊपर से ईश्वरीय शक्ति भी काम करने लग जाती है। तो वही अनुभव आदरणीय बहन जी ने शेयर किया, बहुत धन्यवाद आपका। और आपने जो एक अपना विचार रखा उस पर भी हम जरूर विचार करेंगे, पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार ताली बजाकर बहन जी को धन्यवाद करेंगे। और अभी हम इसी कड़ी में आगे आमंत्रित करना चाहेंगे, हमारे बीच में डॉक्टर आनंद भारद्वाज जी हैं जो कि एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट हैं इंटरनेशनल हिंदी काउंसिल रुड़की से, आप हमारे बीच में पधारे हैं। आपके बारे में मैं बताना चाहूंगा, आपने बहुत सारी मास्टर डिग्री से MSc, MA, MEd, PhD, LLB, MBA, बहुत सारी आपने अलग अलग फील्डों में जो है मास्टर डिग्री हासिल की है और 2 दर्जन से अधिक पुस्तकें आपकी प्रकाशित हुई है, जिनमें एक पुस्तक है पावर ऑफ मेडिटेशन जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है। आपके 24 शोध पत्र जो है वो प्रकाशित हुए हैं, अनेक पत्र पत्रिकाओं में आपने नियमित लेखन, आपके लेखन से लोगों को प्रेरणा मिलती है। और वर्तमान में आप प्रांत अध्यक्ष संस्कृत भारती उत्तरांचलम और कार्यकारी अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय हिंदी परिषद के आप हैं, और इससे पूर्व में आप निदेशक रहे हैं संस्कृत शिक्षा उत्तराखंड राज्य के, सचिव उत्तराखंड संस्कृत अकेडमी और अपर शिक्षा निदेशक उत्तराखंड के आप रहे हैं। तो ऐसे महान प्रतिभा के धनी आदरणीय डॉक्टर आनंद भरद्वाज जी से मैं आग्रह करूंगा कि कृपया आए और आज के सुंदर विषय पर अपने प्रेरक विचार सभी के समक्ष रखें। एक बार जोरदार ताली बजाकर आपका हार्दिक अभिनंदन करेंगे। हमारे बीच में आदरणीय डॉक्टर राजेश राजौरे सर हैं, आपका ट्रेन है तो आप हमारे बीच से विदा ले रहे हैं, तो हम बहनों से आग्रह करेंगे, हमारे सम्माननीय सुमन दीदी आपको संस्थान की ओर से शॉल ओढ़ाकर सम्मानित कर रहे हैं और ईश्वरीय उपहार भी दे रहे हैं। आपका बहुत धन्यवाद जो आप अपना अमूल्य समय निकाल करके इस कॉन्फ्रेंस में पधारे और आपने अपना अमूल्य समय दिया, अपना सुंदर वक्तव्य रखा। संस्थान की ओर से आपको अनंत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आप ऐसे ही समाज हित में, जनहित में, मीडिया हित में ऐसे ही कार्य करते रहें, ऐसी हम संस्थान की ओर से आपके प्रति शुभकामना रखते हैं। मैं पुनः आमंत्रित करूंगा डॉक्टर आनंद भरद्वाज सर को।
ओम शांति। मजासीन, आज के इस कार्यक्रम के चेयरपर्सन बीके भाई मोहन सिंघल जी, मंचासीन ब्रदर बीके नथमल जी, कीनोट स्पीकर जो अभी अभी जा रहे हैं डॉक्टर राजेश राजौर जी, गेस्ट ऑफ ऑनर ब्रदर विशाल यादव जी, आशा निवेदी मैडम, बीके सुमन जी दीदी, ब्रदर कुमार राज अस्थाना जी, शंकर कटारिया जी, और सबसे इम्पोर्टेंट मेरे सम्मुख बैठे हुए अत्यंत आध्यात्मिक आध्यात्मिक भावनाओं से ओतप्रोत ज्ञानवान और ब्रह्मा कुमारी के प्रति समर्पित सभी भाइयों बहनों, आप सभी के लिए मन कर रहा है कि दो पंक्तियां बोलने के बाद अपनी बात प्रारंभ करूं कि जो वातावरण यहां पर सृजित हुआ है अध्यात्म का, शांति का, ज्ञान का, धर्म का, वैराग्य का, ऐसा वातावरण शायद ही कहीं पर मिलता है। तो दो पंक्तियां आप सभी के लिए। सरल चरित कीरत सरल, सरल चरित कीरत सरल, सरल देह और वेश, सरल ज्ञान विज्ञान से सरल किया परिवेश। तो ये जो, और इसके साथ ही जो मीडिया विंग के हमारे इंचार्ज हैं आदरणीय शांतनु भाई जी, जो पर्दे के पीछे रह के काम करते हैं, सारा कुछ काम जो नजर आ रहा है उसके हर कार्य के पीछे, हर एक्शन के पीछे, हर एक्टिविटी के पीछे शांतनु भाई हैं, उनके लिए मैं दो पंक्तियां मैं बोलूंगा, उसके बाद अपनी बात रखूंगा कि फकीरे अमन से, अमन कहते हैं शांति को, फकीरे अमन से मिलियो जरूर मधुबन में, फकीरे अमन से मिलियो जरूर मधुबन में, वो एक शख्स नहीं मुस्तकिल इदारा है, माने ही इज ए कंप्लीट इंस्टीट्यूशन। जो बात उन दिनों की है, लाल किले पे 26 जनवरी का कवि सम्मेलन चल रहा था, मुख्य अतिथि के रूप में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू आ रहे थे, उनके साथ साथ ही बढ़ रहे थे कलम के जादूगर और प्रख्यात कलमकार दिनकर जी। अचानक पैर फिसला, नेहरू जी गिरने लगे, दिनकर जी ने उनको संभाला, नेहरू जी के मुंह से अचानक निकल गया, आज तो दिनकर जी आपने मुझे संभाल ही लिया। जो शब्द दिनकर जी ने वहां पर कहे थे वो आज प्रासंगिक हैं। उन्होंने कहा कि जब कभी राजसत्ता डगमगाती है, जब कभी समाज डगमगाता है, तो कलमकार ही उसको सहारा देता है, कलमकार ही उसको संवारता है। आज का विषय बिल्कुल वही विषय है और उसी विषय पर हम आगे बढ़ने का काम करेंगे, कलम के ऊपर। और कलम जब जाग जाती है तो क्या क्या चमत्कार होते हैं, कलम जब सच्चाई के साथ मिलती है तो इतिहास बनता है, कलम जब मूल्यों के साथ मिलती है तो नैतिकता बनती है, कलम जब संस्कृति के साथ मिलती है तो ग्रंथों का जन्म होता है, कलम जब संस्कृत के साथ मिलती है तो वेदों का जन्म होता है, कलम जब रीति रिवाजों के साथ मिलती है तो परंपराओं का जन्म होता है, कलम जब आचार विचारों के साथ मिलती है तो धर्म बनता है, कलम जब सदाचार के साथ मिलती है तो दिनचर्या बनती है, कलम जब मर्यादा के साथ मिलती है तो नवीन समाज की स्थापना होती है, और कलम जब सहिष्णुता के साथ मिलती है तो शांति की स्थापना होती है। और विश्व शांति की स्थापना, विश्व शांति का जो विषय आज लिया गया है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण कोई विषय हो नहीं सकता। विषय लिया गया है नवीन समाज। सामाजिक जो ढांचा है, अभी आपने देखा हमारा जो एक पड़ोसी देश है नेपाल, उसमें जैन जी ने जो कारनामा किया उससे पूरे विश्व की आंखें खुल गई। एक ऐसा आंदोलन जिसमें न कोई राजनीतिक व्यक्ति था, न कोई वृद्ध व्यक्ति था, न कोई किसी ग्रुप से शामिल हुआ था, ये नौजवान उठ के चल दिए। ये बदलते हुए समाज की कहानी है, और अगर हम बदलते हुए समाज को ध्यान में नहीं रखेंगे तो निश्चित रूप से आने वाला जो समय होगा वो दुष्कर होगा। ये जो समय है वो अत्यंत ट्रांजिशन पीरियड है, क्योंकि इस समय में जेन एक्स भी रह रहे हैं जिनका जन्म 1965 से लेकर 1980 के बीच में हुआ है। इस युग में जेन वाई भी रह रहे हैं जिनका जन्म 1981 से लेके 1997 तक हुआ है, और जेन जी भी रह रहे हैं जिनका जन्म 1997 से लेके 2012 तक हुआ है, और 2013 के बाद जो आज तक पैदा हुए हैं जेन अल्फा भी इस युग में हैं, भले ही वो छोटे बच्चे हैं। तो इस ट्रांजिशन पीरियड में जो समाज में बदलाव हो रहे हैं उनके प्रति मीडिया की महती जिम्मेदारी है, और ये निश्चित रूप से केवल और केवल मीडिया ही है जो इसको पार लगा सकता है। आज आप देखेंगे, एक जमाना था बच्चे दादा दादी के पास खेलते थे, नाना नानी के पास खेलते थे, पुस्तकालयों में किताबें पढ़ते थे, खेल के मैदानों में खेलते थे, और आपस के चौपालों में बैठ के लोगों की धर्म की बातें, काम की बातें, ज्ञान की बातें सुना करते थे। आज बच्चा मोबाइल में डूबा हुआ है, टेक्नोलॉजी में डूबा हुआ है, यूट्यूब में डूबा हुआ है, व्हाट्सएप में डूबा हुआ है। उसको वहां से निकालने की परम आवश्यकता है। आज जो बच्चा डूबा हुआ है वो कहता क्या है, उसके पास अपने तर्क हैं, वो केवल तर्क की सुनता है। वो इसलिए नहीं सुनता कि आप उनके बड़े भाई हैं, इसलिए नहीं सुनता कि आप उसके पिताजी हैं या दादाजी हैं, नहीं सुनता। आज वो अपने तर्क रखता है, हमें जागरूक रहने की आवश्यकता है। आज वो समानता की बात करता है, अगर बिना बात के, पहले हम लोग तो पिटे हैं बिना बात के थप्पड़ लगा करते थे, अगर थप्पड़ कोई लगा रहा है तो समानता की बात करता है कि आपने भैया को तो थप्पड़ लगाया नहीं, मुझे क्यों लगा दिया है। आज वो स्वतंत्रता की बात करता है, आज वो व्यक्तिवाद की बात करता है, आज टेक्नोलॉजी की बात करता है, आज व्हाट्सएप, गूगल, फेसबुक, ट्विटर, इन सब की बात करता है। तो ऐसे में अब आवश्यकता क्या है कि अब क्रांतिकारी परिवर्तन मीडिया के नजरिए में होना जरूरी है। यद्यपि हमारे बहुत सारे साथी इस दिशा में कार्य कर रहे हैं, अब उत्प्रेरक का कार्य, उत्प्रेरक अभी हमारे जो की नोट स्पीकर थे उन्होंने बताया था, ये शब्द केमिस्ट्री से आया है, केमिस्ट्री में होता है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट वो होता है जो किसी भी रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेता है, या तो उसकी गति को बढ़ा देता है या उसकी गति को कम कर देता है। नेपाल में जो हुआ वहां मीडिया ने कैटलिस्ट का काम किया, उस आंदोलन को हवा दी, उस आंदोलन को बढ़ाया, उस आंदोलन को और आगे बढ़ा दिया। अब कैटलिस्ट पॉजिटिव होना चाहिए या नेगेटिव होना चाहिए, यह हमें सोचने की आवश्यकता है, और यहां विवेक की आवश्यकता है। अगर देखें तो सबसे बड़ा कैटलिस्ट अगर यहां पर कोई कार्य कर रहा है तो ब्रह्मा कुमारीज का मीडिया कर रहा है। यहां का जो डिजिटल कंटेंट है, यहां का जो यूट्यूब का कंटेंट है, यहां का जो इंस्टाग्राम का कंटेंट है, यहां का जो एप्स का कंटेंट है, यहां के जो वीडियोज हैं, यहां का जो रेडियो और टीवी का प्रसारण है, वो क्या क्या परिवर्तन कर रहा है, ये बहुत जानने की आवश्यकता है, और हमें उसी दिशा में बढ़ना होगा। मानसिक स्वास्थ्य और इमोशनल स्टेबिलिटी पहला हेडिंग में बोलना चाहता हूं। मानसिक स्वास्थ्य, आज आप देखेंगे 90% से अधिक लोग या तो स्ट्रेस से पीड़ित हैं, या एंग्जाइटी से पीड़ित हैं, टेंशन से पीड़ित हैं, हाइपरटेंशन से पीड़ित हैं, फियर से पीड़ित हैं, फोबिया से पीड़ित हैं, और मेंटल इलनेस से पीड़ित हैं। उनको अगर निकाल के बाहर लाने का काम कर रहा है तो केवल और केवल ब्रह्मा कुमारीज का जो मीडिया है, जो कंटेंट है, वो कर रहा है। और उसे सुधरने वाले मैं यहां पर दो एग्जांपल भी अभी दूंगा आपके सामने। इसके अलावा टेक्निकल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी हम बात करते हैं तो यहां की जो टेक्नोलॉजी है वो निश्चित रूप से अनुकरणीय है। घंटी बज गई है लेकिन मैं दो एग्जाम्पल दिए बिना नहीं मानूंगा। मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, हमारे डॉक्टर श्री गोपाल नारसन रुड़की से आते हैं, पत्रकार हैं, कवि हैं, लेखक हैं, ब्रह्म कुमार भी हैं, और वकालत का पेशा है। इतना क्रोध इनके अंदर भरा हुआ था जब तक इन्होंने ब्रह्मा कुमारीज का साहित्य पढ़ा नहीं, यहां के कंटेक्ट के संपर्क में नहीं आए, इतना इनके अंदर क्रोध भरा हुआ था कि रुड़की में लोग इनको दुर्वासा ऋषि कहते थे। ये एक रास्ते से आ रहे हैं तो दूसरे रास्ते से लोग निकल जाया करते थे। ये इस ब्रह्मा कुमारी के साहित्य का, यहाँ के मीडिया का उत्प्रेरण है कि आज वो बिल्कुल शांत स्वभाव के बन गए हैं। लोग अपने झगड़ों को मिटाने के लिए, झगड़ों को खत्म करने के लिए मीडिएटर के रूप में श्री गोपाल नारथन को बुलाते हैं, याद करते हैं। दूसरा उदाहरण दूंगा, श्री मनोज श्रीवास्तव उत्तराखंड गवर्नमेंट में डिप्टी डायरेक्टर हैं सूचना में। बहुत शांत स्वभाव, झिझक वाले, बोलने में बहुत दूर रहने वाले, अपनी बात को स्पष्ट रूप से न कहने वाले। कहना चाहिए, आप सूचना विभाग में रहते हुए भी दो चार पेज अगर लिखने के लिए दिए जाएं तो उससे भी किनारा कर देने वाले, अपने जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनसे लिखवा लेने वाले। जब से आपने ब्रह्मा कुमारी ज्वाइन किया, यहां के मीडिया के कॉन्टैक्ट में आए, आज आपकी 12 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। आज अभी बोलने के लिए खड़े कर दिए, एक नहीं दो घंटे बोल के दिखाएंगे। आपका जीवन, आपका चरित्र, आपकी सादगी, आपकी प्रेरणा, आपकी ऊर्जा, आपका जो उत्साह है उसके बढ़ने के पीछे केवल और केवल ब्रह्मा कुमारीज का साहित्य है, ब्रह्मा कुमारीज का मीडिया है। मैं इस मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और अपने साथी मित्रों के लिए दो लाइनें बोल के अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत सारे रास्ते में कंटक आएंगे, लेकिन उसे बढ़ते हुए आगे आपको जाना है कि रास्ते के पत्थरों में जिंदगी मानी नहीं। मीडिया पर्सन्स के लिए बोल रहा हूं, रास्ते के पत्थरों में जिंदगी मानी नहीं। आप अलग ही हैं, आपका दूसरा सानी नहीं, और नित नई राहें बनाना खूब आता है तुम्हें, तुम किसी तालाब का ठहरा हुआ पानी नहीं। ओ
बहुत धन्यवाद डॉक्टर भरद्वाज जी के लिए, जिन्होंने बहुत सुंदर शब्दों में अपनी बात रखी और बताया उन्होंने कि कलम जब आचार विचार के साथ मिलती है तब धर्म बन जाता है, और भी कलम को उन्होंने विभिन्न पहलुओं से जोड़ा और कलम का महत्व बताया कि कलम कहां कहां जुड़ेगी और कहां कहां उसका महत्व बदलेगा, कहां कहां उसका विषय बदलेगा। तो कलम में बड़ी ताकत होती है। साथ में आपने जैन जी की बात करी, जैन एक्स की बात करी, बाई की बात करी, जैन अल्फाफ की बात करी, बहुत सारे एग्जाम्पल आपने दिए और अंत में आपने क्रोध का एक उदाहरण दिया। तो मैं बताना चाहूंगा कि क्रोध गर्म कोयले की तरह होता है, जो व्यक्ति क्रोध करता है उससे दूसरा जले ना जले लेकिन वो खुद स्वयं जरूर जलता है। तो क्रोध का बहुत नुकसान होता है, और एक स्टडी में ये भी पता चला है कि जो व्यक्ति क्रोध नहीं करता कभी उसके बीमार होने के चांस भी बहुत कम होते हैं। तो मुझे लगता है कि क्रोध को कभी करना नहीं चाहिए। मैं बुरा ना माने तो एक प्रश्न आपसे पूछ लेता हूं, मैं अगले वक्ता को आमंत्रित करता हूं, उससे पहले पूछे, आप सब आज्ञा देते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने पिछले एक महीने में एक बार भी क्रोध नहीं किया? दो तीन चार लोग हाथ उठा रहे, बाकी लोग सोच रहे हैं ये कैसे संभव है, है ना। साथियों मैं बताना चाहता हूं, क्रोध हमें कभी नहीं करना चाहिए। लोगों को लगता है कि क्रोध से काम बनते हैं पर ऐसा होता नहीं है, क्रोध से काम बिगड़ते हैं। हाल में तो आपको लगता है कि कार्य हो गया लेकिन वो कार्य वास्तव में होता नहीं बल्कि बिगड़ जाता है। और आप देखिएगा जो व्यक्ति क्रोध कर रहा है और जिस पर कर रहा है, ब्लड प्रेशर किसका बढ़ा हुआ होता है, हार्ट रेट किसका बढ़ा हुआ होता है, है जी? तो बताइए फिर फायदा है या नुकसान है। तो मैं भरद्वाज जी की बात को पूरा करते हुए कहूंगा कि आज हम सब इस पवित्र प्रांगण में हैं, अध्यात्म के महाकुंभ में बैठे हैं। यहाँ आप तीन दिन से आप देख रहे हैं, हमारे किसी भी भाई बहन के चेहरे पर आपने ऐसा नहीं देखा होगा जो गुस्से में बात कर रहे हो या चिल्ला के बात कर रहे हो, सबके मुस्कुराती हुए चेहरे। ये अध्यात्म की कमाल है, ये ध्यान की कमाल है, ये राजयोग मेडिटेशन की कमाल है। तो मैं चाहूंगा कि इस तीन दिन जब आप बिना क्रोध के रह सकते हैं या बिना क्रोध के लोगों से मिल सकते हैं तो निश्चित ही हम पूरा जीवन क्रोध मुक्त रह करके अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। तो वो संकल्प जरूर लेके जाना। और इसी क्रम में क्रोध कैसे, हमें क्रोध से हम कैसे मुक्त हो सकते हैं, उसके लिए ध्यान बहुत जरूरी है। और चूंकि आप सब बहुत समय से सुन रहे हैं, हमारे बीच में आदरणीय बीके सुमन दीदी हैं जो कि नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं हमारे एजुकेशन विंग की, वो हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं आपके बारे में बताना चाहूंगा कि आप जो है बहुत ही प्रभावशाली प्रेरक वक्ता हैं। आप देखें, आपके जीवन के बारे में अगर मैं बताऊं, आपने अपने जीवन को न केवल आध्यात्मिक साधना के लिए समर्पित किया बल्कि समाज के उत्थान के लिए निरंतर आप कार्यरत हैं। और बड़े हर्ष और गर्व के साथ मैं आदरणीय दीदी को यहां बुला रहा हूं। दीदी मेडिटेशन टीचर हैं, मैनेजमेंट ट्रेनर हैं, और जैसा मैंने बताया कि एजुकेशन विंग की नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, साथ ही एक प्रख्यात कॉन्फ्रेंस स्पीकर, लेक्चरर, एवं इंटरप्रेटर हैं। वर्तमान में आप ज्ञान सरोवर माउंट आबू में जो भी आप प्रोग्राम देख रहे हैं, जैसे हमारा मीडिया विंग का हो रहा है, ऐसे हमारी और विंग है उसके प्रोग्राम्स यहाँ होते रहते हैं अलग अलग विंगों के, उसको आप कोऑर्डिनेट करती हैं बहुत सुंदर रीति से। बचपन से ही आपके भीतर समाज सेवा की और आध्यात्मिकता के प्रति एक गहरा लगाव था। अपनी शिक्षा के दौरान आप मेघावी छात्रा के रूप में उत्कृष्ट खिलाड़ी भी रही हैं और आपने राष्ट्रीय स्तर पर बास्केटबॉल हैंडबॉल में भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है और आप यहां भी आध्यात्मिक रीति से अनेक अनेक हजारों लोगों को आप प्रेरणा देते हैं। आपने वर्ष 1992 में अपना पूरा जीवन समाज सेवा के लिए आध्यात्मिक कार्यों के लिए समर्पित कर दिया और आप पांडव भवन माउंट आबू में रहकर अपनी सेवाएं शुरू की और वर्ष 1996 से आप ज्ञान सरोवर परिसर में अपनी सेवाएं दे रही हैं और दीदी जी ने बहुत सारे अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जैसे सेल्फ मैनेजमेंट, लीडरशिप, स्ट्रेस मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स, वैल्यू एजुकेशन जैसे विभिन्न विषयों पर आपका बहुत ही जो है प्रेरणादायी उद्बोधन रहा है। और आप जो है एजुकेशन विंग की नेशनल कोऑर्डिनेटर होने के साथ साथ भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों में जो हमारे कोर्स से चलते हैं वैल्यू एजुकेशन के डिप्लोमा और डिग्री, उनके ट्रेनर के रूप में आप अपनी सेवाएं दे रही हैं और ज्ञान सरोवर में पूरे वर्ष चलने वाले कार्यक्रमों का सफल आयोजन में समन्वयक की मुख्य भूमिका निभा रही हैं और भारत सहित विभिन्न देशों में आपने यात्राएं कर आध्यात्मिक अनुभवों से हजारों लाखों लोगों को सुंदर जीवन जीने की प्रेरणा दी। ऐसी बहुमुखी प्रतिभा की धनी हमारे बीच में आदरणीय राजयोगिनी बीके सुमन दीदी जी हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर आपका अभिनंदन करें। आप हमको राजयोग ध्यान की गहन अनुभूति कराएंगी और आप सब भी अनुभव करेंगे कि राजयोग ध्यान किस तरह से हमारे जीवन में बदलाव के निमित्त बन सकता है। तो मैं आग्रह करूंगा आदरणीय दीदी से।
ओम शांति। सम्माननीय मंच और सभा में उपस्थित सभी मीडिया कर्मी, काफी देर से हम सभी सुन रहे हैं और अभी अभी जो बात उठी क्रोध के बारे में है ना, आत्मा में बहुत सारी विशेषताएं भी है लेकिन कमी कमजोरियां भी है। जब कमी कमजोरियों के वशीभूत होकर के जब हम कर्म करते हैं तो कोई ना कोई नकारात्मक कर्म करने के कारण से दुख हम देते हैं और रिटर्न में दुख पाते हैं। तो लेकिन इन नकारात्मक चीजों को या नकारात्मक या व्यर्थ संस्कारों को हम मिटाएं कैसे, उसको ना केवल ये कहने से नहीं मिट जाएगा कि मुझे क्रोध मुक्त होना है, क्रोध नहीं करना है, लेकिन इसको बहुत सहज रीति से हम समझ सकते हैं एनालॉजी के साथ, अंधेरा और रोशनी। अगर इस एक कमरा अगर अंधेरा है तो उसमें रोशनी कैसे लाएंगे, प्रकाश कैसे लाएंगे? तो लाइट जलाएं या फिर दिया जलाएं, टॉर्च जलाएं, किसी न किसी प्रकार के जो प्रकाश का लेके आएंगे तो फिर अंधेरा ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, भाग जाएगा। ये नहीं कह सकते अंधेरा भाग जाओ भाग जाओ। तो इसी रूप से अगर हम क्रोध को कहे कि क्रोध निकल जाए तो क्रोध नहीं निकल सकता, लेकिन उस जो प्रकाश को हमें लाना होगा। तो अगर देखा जाए अंधेरे का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि अंधेरे की परिभाषा क्या है? अंधेरे की परिभाषा है कि प्रकाश का ना होना अंधेरा है। और प्रकाश की परिभाषा क्या है? अंधेरे का ना होना प्रकाश है। क्या कहेंगे आप सब? प्रकाश की परिभाषा क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लाइट? क्या कहेंगे? एब्सेंस ऑफ डार्कनेस इज लाइट। यस, प्रकाश एक शक्ति है, लाइट एनर्जी है जिसका स्रोत है। सूर्य स्रोत है या लाइट ट्यूबलाइट या दिया उसका स्रोत है, अंधेरे का कोई स्रोत नहीं है। प्रकाश एक एनर्जी है, अंधेरे में कोई भी एनर्जी नहीं, कोई शक्ति नहीं है। इसलिए प्रकाश का ना होना अंधेरा है। ऐसे ही आत्मा में भी जो कमी कमजोरियां आती है तो वो सकारात्मक गुणों के अभाव के कारण से ये नकारात्मक चीजें अपने अंदर आ जाता है। जैसे कल के लेसन में आप सभी ने सुना और समझा कि आत्मा के गुण, निजी गुण है शांति, आनंद, प्रेम, शक्ति, ज्ञान। ये सारे जो सात गुण हैं आत्मा के निजी गुण हैं। अगर इस इन गुणों के परसेंटेज अगर कम हो जाता तो फिर नकारात्मक संस्कार रूपी जो अंधेरा है आत्मा को घेर लेता है। शांति की कमी क्रोध उत्पन्न करता है, प्रेम की कमी घृणा और नफरत पैदा करता है, तो शक्ति की कमी निशक्तता, विल पावर की कमी पैदा करता है। तो ऐसे इन गुणों की कमी के कारण से ये अवगुण पैदा होता है। तो इन गुणों को फिर से हम अपने अंदर भरपूर अनुभव करने की जरूरत है। और वो भरपूरता की अनुभूति हम कैसे करें? वो मेन सोर्स एनर्जी के जो मेन सोर्स है परमपिता परमात्मा, उनके साथ कनेक्शन जोड़ करके आत्मा अपनी शक्तियों में, अपने गुणों में, अपने वास्तविकता में फिर से आ सकती है। ये सहज है, बहुत मुश्किल बात नहीं है। इसी को हमने कहा राजयोग। योग माना कनेक्शन जोड़ परमात्मा के साथ। परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़ते हुए हम आत्मा को भरपूर करते हुए अपने ही कर्मेंद्रियों पर राज्य कर सकते हैं। सिंपल रूप से इसी को राजयोग कहते हैं और इसी को कर्म योग भी कहते हैं। इन्हीं गुणों को, इन्हीं शक्तियों को जब हम कर्मों में दिखाते हैं, एग्जिबिट करते हैं, ये कर्म योग हो गया। तो चलिए ज्यादा विस्तार में ना जाते हुए हम अनुभव के ओर चले। चंद क्षणों के लिए हम उस परमपिता परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़ते हुए इस दिव्य अनुभूति को हम जरूर आज करें। आसपास के वातावरण से, लोगों से, आवाजों से अपने मन और बुद्धि को डिटैच करें। हाथ में जो भी चीजें हैं, पर्स है, मोबाइल है, नोटबुक है, सब कुछ बाजू में रख करके अपने आप को फ्री महसूस करें। और जो यहां से कमेंट्री दिया जाएगा उसको सोचते हुए विजुलाइज करने की कोशिश करें। आंखों को आप बंद रखना चाहते हैं या फिर खुला रखना चाहते हैं, ये आपकी मर्जी है। लेकिन पूरी तरह फोकस जो कमेंट्री चल रहा है उसके ऊपर रहें। मन बुद्धि को आसपास के वातावरण से, विचारों से विड्रॉ करते हुए भ्रुकुटी के मध्य में केंद्रित करें। जहां मैं आत्मा विराजमान हूं, एक चमकता हुआ अजब सितारा, अनादि अविनाशी शक्ति, चैतन्य, भ्रुकुटी के मध्य में बैठकर मैं आत्मा इस शरीर को नियंत्रण करती, शरीर रूपी वस्त्र को धारण कर इस कर्म क्षेत्र पर कर्म कर रही हूं। कर्म करने वाली मैं आत्मा हूं, इस शरीर द्वारा करा रही हूं। प्रकृति के मध्य में बैठकर इन आंखों द्वारा देख रही हूं, कानों द्वारा सुन रही हूं, मुख द्वारा बोल रही हूं, मैं आत्मा शांत स्वरूप मुझ आत्मा का निजी स्वरूप निजी गुण शांति है। शक्ति स्वरूप आत्मा जैसे मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु हूं वैसे ही मुझ आत्मा का पिता परम आत्मा भी अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है। मैं अपने मन बुद्धि द्वारा ऊपर की ओर जहां मुझ आत्मा का निजी घर परम धाम वहां पहुंचती हूं। परमात्मा के सानिध्य में मैं आत्मा एकदम शांत शीतल उस परमात्मा के अति प्रिय संतान हूं। मेरे पिता में जो भी है वर्षे के रूप में मुझ आत्मा को मिल रहा है। मेरा पिता परमात्मा शांति का सागर है। शांति के प्रकंपन मुझ आत्मा पर पड़ रही है और मैं आत्मा शांत स्वरूप सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा से शक्तियों के किरणों को ग्रहण करते हुए मैं आत्मा अपने अंदर के सब कमी कमजोरियों को नष्ट कर रही हूं खत्म कर रही हूं। सारी चिंताएं भय टेंशन तनाव सब कुछ खत्म होता जा रहा है क्योंकि मुझे विश्वास है मेरा पिता परम पिता परमात्मा मेरा साथी है मेरा गाइड है। उनके श्रीमत पर चलकर अपने अंदर सर्वगुण और सर्व शक्तियों को भरते हुए समाज को बेहतर बनाने में मैं योगदान दे रही हूं। निरंतर परमात्मा से सर्व शक्तियां लेते हुए इस संसार में सर्व आत्माओं को दे रही हूं। ताकि ये विश्व में शांति स्थापित हो वसुधैव कुटुंबकम की भावना जागृत हो घर घर में सुख शांति और समृद्धि रहे। ओम शांति।
बहुत धन्यवाद आदरणीय दीदी के लिए जिन्होंने बहुत ही सुंदर रीति से सभी को गहन शांति की अनुभूति कराई। राजयोग ध्यान एक चिंतन की प्रक्रिया है, सकारात्मक चिंतन की प्रक्रिया है, जिसमें हम मन के द्वारा श्रेष्ठ और सकारात्मक चिंतन करते हैं और बुद्धि के द्वारा उस चिंतन को विजुलाइज करते हैं। ऐसा करने पर धीरे धीरे हमारा मन उसी दिशा में कार्य करने लगता है और हमारी सोच सकारात्मक होने लगती है और हमारे जीवन में एक बदलाव की शुरुआत हो जाती है। जैसे दीदी ने सकारात्मक विचार दिए, मैं देख रहा था सभी गहन शांति की अनुभूति कर रहे थे। इसलिए हम अपनी भागती दौड़ती जिंदगी में थोड़ा समय अपने आप से बात करने के लिए निकालें, अपने आप के साथ बैठें, थोड़ा ध्यान करें दिन की शुरुआत में, रात को सोते समय, तो आप देखेंगे कि आपका दिन बहुत ही सुंदर हो जाएगा। किसी ने ठीक ही कहा है कि शरीर का आत्मा से है अजीब रिश्ता, या दूसरे शब्दों में ऐसे कहें, जिस्म का रूह से है अजीब रिश्ता कि जिंदगी भर साथ रहे पर खुद की खुद से मुलाकात ना हुई, खुद की खुद से मुलाकात ना हुई। तो ये राजयोग ध्यान जो है खुद की खुद से मुलाकात करने का एक सुंदर माध्यम है। इसलिए जरूर अपने लिए समय निकालें और मेडिटेशन का अनुभव करें। पुनः दीदी को बहुत धन्यवाद। और अभी हम आमंत्रित करने जा रहे हैं, हमारे अगले गेस्ट ऑफ ऑनर हैं भ्राता कुंवर राज अस्थाना जी, जो कि चीफ एडिटर हैं दिव्य हिमगिरी, जो कि देहरादून से हमारे बीच में पधारे हैं। तो मैं आपको आग्रह करता हूं कृपया आए और नवीन सामाजिक व्यवस्था के उत्प्रेरक के रूप में मीडिया विषय पर अपना सुंदर और प्रेरक उद्बोधन हम सभी के समक्ष रखें। आपका मैं परिचय देना चाहूंगा। आप ऐसे बहुआयामी व्यक्तित्व हैं जिन्होंने पत्रकारिता, विज्ञान, संप्रेषण और प्रशासनिक क्षेत्र में अपनी एक अलग विशिष्ट पहचान बनाई है। कुंवर राज अस्थाना जी देहरादून से हमारे बीच में हैं। वर्तमान में दिव्य हिमगिरी एवं विज्ञान संप्रेषण के प्रधान संपादक के रूप में कार्यरत हैं। इसके साथ ही आप हिमालयन एकेडमी ऑफ नेक्स्ट जेन टेक्नोलॉजी देहरादून के भी आप निदेशक हैं। आपकी शैक्षणिक योग्यता, आपने बीएससी पीसीएम से किया, एमए राजनीति विज्ञान में किया और एमजेएमसी आपने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में अपने मास्टर डिग्री हासिल की। इसके साथ ही विक्रमशिला विद्यापीठ द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधि से आपको सम्मानित किया गया। आपके अनुभव की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री एनडी तिवारी जी के साथ आप ओएसडी के रूप में महत्वपूर्ण जिम्मेवारी भी निभा चुके हैं। लेखन के क्षेत्र में भी आपका उल्लेखनीय योगदान है। आपने आपके द्वारा लिखी हुई 5 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। और आपकी उपलब्धियों में अगर हम बात करें तो वर्ष 2020 में देहरादून इंटरनेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी फेस्टिवल के आर्किटेक्ट में आयोजन सचिव के रूप में आप अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। और उत्तराखंड सरकार का ये जो कार्यक्रम है बहुत ही प्रमुख कार्यक्रम है जिसमें आपने सचिव के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। आपको इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा डॉक्टर्स डे के अवसर पर प्रतिष्ठित बीसी रॉय अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो कि उत्तराखंड के तत्कालीन राज्यपाल श्री के पॉल जी के कर कमलों से आपको दिया गया। इसके साथ ही लॉयंस क्लब इंटरनेशनल द्वारा आपको वेटरन सम्मान से भी अलंकृत किया गया। ऐसे विद्वान, प्रेरणादायी और बहुआयामी व्यक्तित्व डॉक्टर कुंवर राज अस्थाना जी का हम सभी हृदय से स्वागत अभिनंदन करते हैं। जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन। कृपया आए और संबंधित विषय पर अपना प्रेरक उद्बोधन सभी के समक्ष रखें श्री अस्थाना जी।
ओम शांति ओम। मंचासीन अतिथियों तथा इस कार्यक्रम में आए दूर दराज से देश के कोने कोने से मीडिया बंधुओं को मेरा सादर अभिवादन। मैं उस देवभूमि से आया हूं जहां पर शिव बाबा और विष्णु भगवान चैतन्य स्वरूप में विराजते हैं, जहां पर जीवनदायिनी गंगा और यमुना का उद्गम क्षेत्र है। और मैं उस धरती से आकर इस पावन धरती को बार बार प्रणाम करता हूं, इस तपोभूमि को, इस देवभूमि को और ब्रह्म बाबा की इस पावन धरती को मेरा बहुत बहुत प्रणाम है। और मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस तपोभूमि पर जब मैं यहां आया और मैंने यहां इस पूरे क्षेत्र को घूमा तो मुझे ये एहसास हुआ कि ये यहां जितनी वाइब्रेशंस हैं, जितनी पॉजिटिव वाइब्रेशंस हैं, उसका जो निमित्त है वो ब्रह्म कुमारीज का ये जो ज्ञान सरोवर है वो है। मैं यहां एक स्पीकर के रूप में ही नहीं आया हूं, बल्कि मैं एक समर्पित भाव के रूप में, समर्पित भाव के साथ आया हूं, क्योंकि मेरे से पूर्व वक्ता डॉक्टर आनंद भारद्वाज भी उत्तराखंड से आते हैं और उन्होंने श्री गोपाल नारसन जी और मनोज श्रीवास्तव जी के बारे में बताया, तो मनोज श्रीवास्तव जी को बदलते हुए मैंने बहुत करीब से देखा है और उनके जो चेंज आए उन्होंने मुझे प्रेरित किया यहां आने के लिए। मैं यहां दूसरी बार आया हूं, पिछली बार जब आया था तो तब मैं केवल एक विजिटर के रूप में आया था और मुझे यहां पर आकर बड़ी आत्मिक संतुष्टि मिली और मैं जब मुझे दोबारा यहां निमंत्रण मिला तो जितने कार्यक्रम थे वो सब अलग कि यहां पहले जाना है, क्योंकि मैं एक अपना मीडिया हाउस चलाता हूं, तो जब अपना मीडिया हाउस जब चलाता है कोई तो उसकी व्यस्तताओं का, उसकी एंगेजमेंट का, जो यहां मेरे पत्रकार बंधु बैठे हैं, विशाल भाई भी अब चूंकि पहले पत्रकारिता में रहे अब अपना संस्थान चला रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी व्यस्तताएं और कितनी एंगेजमेंट होती हैं। और हम देहरादून से आए हैं तो देहरादून और माउंट आबू के बीच में एक बहुत बड़ा डिस्टेंस भी है। आज का जो विषय है वह है नवीन सामाजिक व्यवस्था में मीडिया कैसे उत्प्रेरक का कार्य कर सकता है। तो मीडिया आजादी के आंदोलन से ही सामाजिक व्यवस्थाओं को गढ़ने और मूल्यों को स्थापित करने के मामले में सदैव से ही एक कैटलिस्ट के रूप में, उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता रहा है। जटिल सामाजिक मुद्दे जैसे पर्यावरण, जन स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाना, मानव अधिकारों तथा कर्तव्यों के प्रति संवेदनशीलता का माहौल बनाने में मीडिया ने एक उत्प्रेरक का कार्य किया है और कर रहा है। सोशल मीडिया के माध्यम से, जब से सोशल मीडिया आया है तब से एक ऐसी व्यवस्था बनी है, एक ऐसा, क्योंकि हम लोग मानते हैं कि मीडिया पर किसी न किसी रूप पर शासन सत्ता का प्रभाव रहता है, लेकिन ये जो नया मीडिया आया है, ये जो सोशल मीडिया आया है, ये एक ऐसा माध्यम बना है जिस पर सत्ता का कोई प्रभाव नहीं है और वो बिना प्रभाव के अपना कार्य कर रहा है और जो भ्रष्टाचार को उजागर करने और सत्ता की जवाबदेही के लिए एक उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है। साक्षात्कारों, सफलताओं की कहानियां, महान व्यक्तियों की जीवनियां, उनके जीवन के प्रेरक प्रसंगों के माध्यम से भावी पीढ़ियों को आकर्षित करना तथा उनके व्यक्तित्व निर्माण के रूप में भी मीडिया एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर रहा है। ज्ञानवर्धक चैनल जैसे डिस्कवरी है, एनिमल प्लेनेट है, इस तरह के चैनल्स, ज्ञान विज्ञान आधारित यूट्यूब चैनल्स, पत्र पत्रिकाएं, उनके माध्यम से भी ज्ञान का प्रसार करने में मीडिया एक उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है। पूर्व में जब बच्चे आईआईटी के लिए तैयारी करते थे या सीपीएमटी, बाद में अब नीट के माध्यम से मेडिकल कॉलेजों के लिए तैयारी करते थे, तब कोचिंग ज्वाइन किया करते थे। कोचिंग ज्वाइन करने का जो उद्देश्य होता था वो ये होता था कि वहां पर टीचर्स टेक्निक बताते थे कि कम समय के अंदर आपको प्रश्न पत्र कैसे हल करना है, आपको अगर गणितीय गणना करनी है तो उसकी टेक्निक्स बताई जाती थी, उनके फार्मूले बताए जाते थे, ऐसे ही फिजिक्स में, ऐसे ही केमिस्ट्री में, ऐसे ही दूसरे सब्जेक्ट्स में। लेकिन जब से ये सोशल मीडिया आया है तब से ये चीजें, ये टेक्निक्स अब सोशल मीडिया पर सुलभ हो गई हैं। एक बहुत बड़ा ऐसा वर्ग जो उन महंगी कोचिंग्स को अवेल नहीं कर पाता था, आज वो सोशल मीडिया के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से उनको अवेल कर पा रहा है। इस प्रकार से ज्ञान के प्रसार में जो सोशल मीडिया है उसका वो एक उत्प्रेरक के रूप में अपना योगदान दे रहा है। मीडिया एक दर्पण की तरह है जो अच्छाई भी दिखाता है, बुराई भी दिखाता है। आप सज धज के जाओगे तो वो आपको बहुत सुंदर चेहरा दिखाएगा, आप अपना विकृत चेहरा लेके जाओगे तो आपको विकृत चेहरा दिखाएगा। वो सकारात्मक भी दिखाता है, वो नकारात्मकता भी दिखाता है। तो मैं ये मानता हूं कि ये पाठकों पर छोड़ देना चाहिए, ये व्यूअर्स पर छोड़ देना चाहिए, दर्शकों पर छोड़ देना चाहिए कि उसमें से वो क्या ले रहा है। तो वो जो दर्शक है उसके व्यक्तित्व के निर्माण का जो कार्य ब्रह्म कुमारीज कर रहे हैं वो बहुत ही अनोखा कार्य है कि हमें लेना क्या है। अच्छाई और बुराई साथ साथ चलती हैं। यदि ऐसा ना होता, जो भी भाई साहब ने कहा, भाई ब्रह्म कुमार भाई ने कहा कि क्रोध के बारे में, उसकी दीदी ने भी क्रोध के बारे में बताया, तो अगर अच्छाई और बुराई साथ नहीं चल रही होती तो क्रोध नहीं होता। तो और कल जो इनॉग्रल सेशन के अंदर दीदी मन संचालन कर रही थी, उन्होंने एक बात कही कि कैकेयी राम राज में रहती थी और विभीषण रावण राज में रहता था। विभीषण के ऊपर रावण राज के बुराइयों का असर नहीं हुआ और राम राज में रह रही कैकेयी कुटिलता से बाहर नहीं आ पाई। तो ये अपने मन की स्थिति है कि हमें क्या ग्रहण करना है, क्या ग्रहण नहीं करना है। यदि हम ब्रेकिंग न्यूज समसामयिक खबरों की बात करें तो जैसे अरुण नेथानी जी ने कल एक बात बहुत ही बात कही, शॉर्ट में कही, मैं उसको एलोबरेट करना चाहूंगा कि संपादक नाम की संस्था सोशल मीडिया में नहीं है, प्रिंट मीडिया में। अच्छा, घंटी बज गई बड़ी जल्दी कि संपादक नाम की संस्था नहीं है और ये संपादक नाम की संस्था ना होने के कारण सोशल मीडिया कहीं कहीं अपनी जो बहक जा रहा है उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि सरकारें आज नहीं कल उनके लिए भी कुछ ना कुछ, कोई ना कोई नियमावली, कोई इस तरह की चीजें, कोई इस तरह के स्टैंडर्ड्स बना देंगी और वो बन जाएंगे। मैं सकारात्मक पत्रकारिता और समाज के नवीन जो मापदंड है उसके अंदर कैटलिस्ट के रूप में मीडिया की भूमिका के बारे में एक अपना उदाहरण देना चाहूंगा। दिव्य हिमगिरी का प्रकाशन मैं 15 वर्षों से कर रहा हूं, मैं 15 वर्षों से उसका संपादक हूं और शिव की अनुकंपा से उत्तराखंड के अंदर वो अकेली पत्रिका है जो साप्ताहिक प्रकाशित होती है और सकारात्मक पत्रकारिता के माध्यम से ही उसने एक अपना मुकाम हासिल किया है। इसके साथ ही हमने 5 साल पहले विज्ञान संप्रेषण नाम की एक पत्रिका का प्रारंभ किया जो विज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए कार्य कर रही है। 5 वर्षों से उस पत्रिका का संचालन बिना किसी विज्ञापन के हो रहा है और कंप्लीटली सब्सक्रिप्शन बेस हो रहा है। वो सब्सक्रिप्शन बेस, तो आप ये समझिए कि मैं कि 5 सालों के अंदर हमने उसका सब्सक्रिप्शन इस लेवल पे लेकर आ गए कि इस वर्ष उत्तराखंड सरकार के साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने और केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा ने हमको पत्र लिखकर कहा कि ये पत्रिका आप चलाते रहिए, इसके लिए हम अनुदान देंगे। 5 साल हमने चला, हम 5 साल बाद, लेकिन 5 साल तक हम अभी भी हमारे पास एक पाठ होगा। तो हमें ये ढूंढना है कि सकारात्मक लोग और सकारात्मक लोगों को सकारात्मक चीजों की आवश्यकता है। अभी भी जब हम दिव्य हिमगिरी का हर अंक छपता है तो मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं उस संपादिका पढ़ते हैं, यानी कि संपादिका पढ़ने की अभी भी 2 मिनट और लूंगा। तो मैं कल एक देख रहा था कि क्या हमारे जो टीवी इंडस्ट्री है उसमें जो सबसे बड़ा माध्यम है आज की डेट में उसकी क्या स्थिति है। तो हमारे यहां भारत में जो टीवी चैनल्स हैं उनकी इंडस्ट्री का जो सालाना जो टर्नओवर है 65,000 करोड़ रुपए का है भारत के अंदर, और अमेरिका की एक कंपनी है वार्नर्स ब्रदर्स जो डिस्कवरी चैनल चलाती हैं, एनिमल प्लेनेट चलाती हैं, एचबीओ चैनल चलाती हैं, सीएनएन जैसे चैनल चलाती हैं, उसका एक साल का जो बजट है वो 3,00,000 करोड़ का है। तो आप ये समझिए कि डिस्कवरी चैनल दुनिया का सबसे, उसमें विज्ञापन सबसे महंगा विज्ञापन छपता है, वो प्रसारित होता है, सबसे ब्रॉडकास्टिंग जितने चैनल्स हैं सबसे महंगा विज्ञापन अगर कहीं है तो डिस्कवरी में है, और डिस्कवरी तो किसी प्रकार की वो तो सकारात्मक चीज ही प्रस्तुत करता है, विज्ञान का प्रचार प्रसार करता है। तो इसका मतलब यह है कि जो सकारात्मक चीजें हैं उनका भी बहुत बड़ा बाजार है। और मैं एक मिनट लूंगा बस, जो हमारे बहुत बड़े हमारे देश से कोने कोने से पत्रकार भाई आए हुए हैं, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हम कल से बात कर रहे हैं नीड फॉर ग्लोबल पीस रोल ऑफ मीडिया। तो एक जमाना ये था कि आंचलिक जो पत्र पत्रिकाएं थी उनका जमाना था, जो नेशनल पेपर्स थे वो छपकर आते थे, या तो शाम तक पहुंचते थे या अगले दिन पहुंचते थे। उसके बाद जमाना बदला, जो नेशनल पेपर्स थे उन्होंने अपने एडिशंस को विस्तार दिया, और वो विस्तार ऐसे दिया कि एक अखबार माल्या एक जगह से प्रकाशित होने शुरू हुआ, और उसने अपने आसपास के 15 जिलों के अंदर हर जगह का एक एक एडिशन निकालना शुरू कर दिया, ये इस जिले का एडिशन है, ये इस जिले का एडिशन है, उसने लोकलाइज कर दिया, और धीरे धीरे लोकल जो अखबार थे वो समाप्त हो गए, जो बचा सके वो आज भी चल रहे हैं। लेकिन मैं दो भागों में बांटना चाहूंगा भारत की पत्रकारिता को, एक हिंदी भाषी और एक गैर हिंदी भाषी। जो गैर हिंदी भाषी क्षेत्र है वहां आज भी आंचलिक समाचार पत्रों का प्रचार प्रसार है, वहां उनका एक अपना एक अलग मुकाम आज भी है। ये सारी जो गिरावट आई है सारी हिंदी भाषी क्षेत्रों के अंदर आई है, वहां पर अभी भी आप जाइए, चाहे आप बंगाल चले जाइए, चाहे आप तमिलनाडु चले जाइए, चाहे आप आंध्र प्रदेश चले जाइए, चाहे आप उड़ीसा चले जाइए, वहां सब जगह आपको वहां के लोकल लैंग्वेज के अखबार मिलेंगे जिनका बहुत अच्छा अच्छा सर्कुलेशन है, बहुत अच्छे मीडिया हाउस बने हुए हैं। अब जमाना चेंज हुआ, अब सोशल मीडिया आ गया। जब सोशल मीडिया आया, वेब आया, पोर्टल्स आए, तो वो जो आंचलिकता है वो दोबारे से जीवंत होट हुई है, दोबारा से जीवंत होट हुई है। आज भाई साहब एक पोर्टल चला रहे हैं, आप में से बहुत सारे लोग होंगे पोर्टल चला रहे हैं, आज सबके पास एक अपना स्थानीय रीडरशिप है कमिटेड, और उसके बाद ऑनलाइन जो रीडरशिप है उसका कोई था नहीं है कि वो कहां तक जा रही है समाचार, कहां तक पढ़ा जा रहा है, पूरे देश में पढ़ा जा रहा है। पिछले साल एक मिनट के लिए चार धाम यात्रा के अंदर हेली सर्विसेज को रोक दिया गया, और ये खबर 10 मिनट के अंदर पूरे हिंदुस्तान के अंदर फैल गई, क्योंकि भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, कि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा स्थगित कर दी गई, ऐसी खबर फैल गई। 10 मिनट के अंदर सरकार बैकफुट पर आ गई, 10 मिनट के अंदर पूरा तंत्र हिल गया, सरकार को स्पष्टीकरण जारी करना पड़ा, और जिस अधिकारी ने उसको रोका था उसको एक कारण बताना पड़ा कि यह नोटम की वजह से रोका था, इसका कोई दूसरा नहीं था, स्पष्टीकरण दिया उसने अपना। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जो आज का दौर है, आज के दौर के अंदर जो आंचलिक जो पत्रकारिता है उसका दौर दोबारा से आ गया है, और हमें उसका सदुपयोग करना है, और हमें उसका सदुपयोग शांति के लिए करना है, सकारात्मकता के लिए करना है। और हम जब यहां से जाएं तो हम अपने अपने पोर्टल्स के माध्यम से, अपने अपने पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से कुछ उसमें एक कंटेंट एक ऐसा फिक्स करें जिससे हम सकारात्मकता को बढ़ावा दे सकें। इसी के साथ सबको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।
बहुत धन्यवाद कुंवर राज अस्थाना जी को, जिन्होंने बहुत ही सुंदर विषय पर अपना बहुत ही सुंदर रीति से उद्बोधन रखा। कई सारे एग्जाम्पल आपने दिए, और आपने बताया कि आजादी के टाइम से ही मीडिया जो है उत्प्रेरक का कार्य करता रहा है, अब ये अपने ऊपर निर्भर करता है कि आप उससे सकारात्मकता उठाते हैं या नकारात्मकता उठाते हैं। तो पुनः मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं, और इसी क्रम में मैं अभी आमंत्रित करने जा रहा हूं हमारे बीच में भाई साहब शंकर कटीरा जी, जो कि नेशनल सेक्रेटरी जनरल हैं ऑल इंडिया स्मॉल और मीडियम न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया, जो कि दिशा गुजरात से हमारे बीच में पधारे हैं। मैं आपको आग्रह करता हूं कृपया आए और अपना विषय से संबंधित अपना उद्बोधन हम सभी के समक्ष रखें। आपके बारे में बताना चाहूंगा कि आप एसोसिएशन ऑफ स्मॉल एंड मीडियम न्यूज़पेपर एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव हैं, आप एडिटर हैं लोकपाल न्यूज अहमदाबाद दिशा गुजरात के, प्रेसिडेंट श्री रामदेव सर्व सेवा ट्रस्ट पोकरण राजस्थान एवं विश्व लोहाना महापरिषद प्रचार प्रसार कमेटी, इसके साथ ही आप श्री नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर ट्रस्ट दिशा के भी पदाधिकारी हैं, और साथ ही साथ आप विभिन्न सेवा कार्यों में कार्यरत रहते हैं। आज हमारे बीच में हैं, हम आपसे आग्रह करते हैं कि इस सुंदर विषय पर अपना संक्षिप्त में जो है वक्तव्य रखें आदरणीय श्री शंकर कटीरा भाई साहब।
ओम शांति। मंचस्थ महानुभव, भारतवर्ष से पधारे हुए साथियों, नवीन सामाजिक व्यवस्था में उत्प्रेरक के रूप में मीडिया ये बहुत गहरा विषय है। आज 2026 में मीडिया सिर्फ खबर देने वाला नहीं रहा, वो समाज का इंजीनियर बन गया है। जैसी मीडिया होगी वैसा समाज बनेगा। उत्प्रेरक तो वो होते हैं जो खुद बदले बिना दूसरों में बदलाव ला दे। मीडिया का काम भी यही है, खुद तटस्थ रहकर समाज में नई सोच नई व्यवस्था की चिंगारी लगा दे। मीडिया कैसे बन रहा है नवीन सामाजिक व्यवस्था का उत्प्रेरक? पुरानी सोच तोड़ना, नई सोच बनाना। पहले जाति, देश, बाल विवाह परंपरा के नाम पर कुरीतियां चल रही थी, पहले से ही आ गया, बच गए, कोई चिंता नहीं, मेरे ध्यान है। ठीक। मीडिया ने किया लगातार स्टोरी, फिल्म, बहस के जरिए कि ये गलत है। आज की नई पीढ़ी चीजों को नकार रही है। जो नतीजा आया वो नई पीढ़ी ये सब चीजों को नकार रही है। हम सबसे अच्छा उदाहरण जहां बैठे हैं उस संस्था का दे सकते हैं। ये तपोभूमि जो है वो तपोभूमि ब्रह्मा कुमारी मीडिया, हम आत्मा है शरीर नहीं, जाति पाति जेंडर का भेद अपने आप खत्म हो रहा है। यहां से जो प्रचार कार्य, मैं तो इतना कहूंगा कि इस मीडिया का सबसे बड़ा घराना कोई है तो वो ब्रह्मा कुमारी के संस्था के द्वारा चल रहे मीडिया का है। सोशल मीडिया हो, टेलीविजन के जरिए हो, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, हर प्रकार से ब्रह्मा कुमारी के जरिए जो कार्य हो रहा है मीडिया का, वो सबसे ज्यादा कार्य और प्रोत्साहन वाला काम हो रहा है। पहले कि जब हम ये करते थे, कोई आदिवासी वाल्मीकि सफाई कामदार पिछड़ी हुई जातियों के बारे में मीडिया लिख रहा था, लेकिन आज वो अपना अपना स्थान बना के आगे बढ़ गए हैं। आज जो जरूरत है वो खास तौर पे मीडिया को ब्रह्मा कुमारी जैसी संस्था के साथ जुड़ के हम हमारे टेबल पे या हमारी चैम्बर में बैठे लिखने तब योगिक क्रिया करें। जैसे अभी बहन जी ने यहां हम सबको योग के द्वारा, ओम शांति के द्वारा जो ध्यान दिया, योग कराया, ऐसे हम 5 मिनट 10 मिनट अपना काम शुरू करने के पहले हम मीडिया बंधु जो करेंगे तो मुझे लगता है कि हमारी कलम में एक ताकत आएगी, एक सकारात्मक सोच के साथ हम हमारी कलम को आगे बढ़ाएंगे। वर्तमान में पुराना मीडिया सरकार को कोसता था, किसी की गलतियां निकालता था, लेकिन आज हम लोग समाधान की ओर आगे बढ़ रहे हैं कि भाई ये करो, ये 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 कार्य का ही करना है, तो इस सोच में हम आगे बढ़ रहे हैं। कहने का मतलब कि नकारात्मकता से दूर और सकारात्मक की ओर हमें आगे बढ़ना है। यही मीडिया का वर्तमान में हम छोटे छोटे मेरे 3-4 मैगजीन हैं, ये लोकपाल न्यूज करके मैं चलाता, उसमें मैंने एक प्रयोग किया है, जो बच्चे विद्यार्थी हैं एक से लेके 12वीं कक्षा तक या कॉलेज तक, इनको प्रोत्साहन देना है, तो उसमें एक हम उनको कॉन्ग्रेचुलेशन शुभकामनाएं फोटो के साथ बिना मूल्य, लोग पैसे लेते हैं, हम उसमें नहीं लेते, अखबार में भी देते हैं, अपनी जो YouTube है, सोशल मीडिया के जरिए WhatsApp ग्रुप है उसमें डालते हैं, तो उनको प्रोत्साहन मिलता है, वो निरंतर एक कार्य चलता रहता है। बात कहाँ आगा के थेरी के एक सोच, एक सकारात्मक बात को रखते हुए उनसे हरीफाई के इस अखबार में, ये YouTube पर मेरा भी इंटरव्यू आए, ये WhatsApp पे मेरा भी नाम आए, मेरा भी फोटो लगे और मुझे भी कॉन्ग्रेचुलेशन मिले, ये एक सकारात्मक कार्य हमने ये किया। मैं करुणा भाई साहब को भी याद करूंगा, आज से पहले 30 साल पहले यहाँ शुरुआत की थी तो उसमें भी मेरी हाजिरी थी, मेरा पूरा संगठन आया था, एसोसिएशन ऑफ स्मॉल एंड मीडियम न्यूज़पेपर की जहां भी हमारी मीटिंगें होती है, वो मीटिंगों में हम पहले कार्य ये करते हैं कि कौन सा सेंटर नजीक है, उस सेंटर में से हम दीदियों को बुलाते हैं और 15-20 या 25 मिनट का उनको टाइम देते हैं कि आप पहले, ये 400 लोग आए हैं हमारे संगठन के, 200 लोग आए, उनमें आप ये उनको पूरा पॉजिटिव न्यूज के लिए पॉजिटिव संदेश यहां दो। वो कार्य हम लोग आज भी हमारे संगठन के जरिए कर रहे हैं। हमारे में खास आभारी तो शशिकांत भाई है, हमारे नॉर्थ गुजरात के विंडिया विंग के, जो हमें हर बार इस संस्था से जोड़ के रखते हैं, इस बार भी मुझे बुलाया। हमारा जो न्यूज़पेपर है उसमें उनका एक पेज का आध्यात्मिक विचार और न्यूज, इस संस्था के न्यूज हम रखते हैं। आज भी एडिशन था शशिकांत भाई के पास, मैंने दोपहर को मांग लिया कि मुझे ये चाहिए। कहने का मतलब कि आपका, आपके पास है तो आप इसको भी उजागर करो, ब्रह्मा कुमारी जी की संस्था में क्या चल रहा है, क्या करना चाहिए, क्या विचार है, ये सब उसमें हम रखते हैं। मैं शांतनु भाई का भी तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं, इन्हीं शब्दों के साथ सबका ये मौका दिया ब्रह्मा कुमारी ने तपोभूमि पे आने का, ज्ञान सरोवर में, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।
बहुत धन्यवाद भाई साहब के लिए, जिन्होंने बहुत ही संक्षिप्त में गागर में सागर भरते हुए अपनी बात सुंदर रीति से रखी। मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं। और अब बारी है हमारे आज के इस कार्यक्रम के चेयरपर्सन आदरणीय बीके मोहन सिंगल भाई साहब का, जो कि चेयरपर्सन है साइंटिस्ट इंजीनियर बिंग, इंजीनियर एंड आर्किटेक्ट बिंग के। और आपके बारे में अगर मैं कहूं, थोड़ा सा परिचय आपका बता दूं, आपने लखनऊ विश्वविद्यालय से वर्ष 1963 में स्नातक की डिग्री की और 1967 में मास्टर डिग्री हासिल की, और उसके साथ ही आपने 1967 से लेकर के 28 वर्षों तक ONGC के कई प्रोजेक्ट में काम किया, और उसके बाद वर्ष 1996 में आपने जो है वहां के सुपरिटेंडिंग जियो फिजिसिस्ट के पद से वॉलेंट्री रिटायरमेंट लेकर के ब्रह्मा कुमारी संस्थान में पूर्ण रूप से समर्पित होकर के सेवाएं देना प्रारंभ किया, और तब से लेकर के आज तक आपने बहुत सारी सेवाएं की हैं। आप राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन की गवर्निंग बॉडी के सदस्य हैं, आप संस्था की मैनेजमेंट कमेटी के भी सदस्य हैं, वैज्ञानिक अभियंता जो हमारा प्रभाग है उसके चेयरपर्सन हैं, आप ज्ञान सरोवर अकेडमी के कोऑर्डिनेटर के पद पर भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसके साथ ही साथ आपके निर्देशन में बिंग के ओर से भारत के कई राज्यों में, नेपाल में,
भारत और भारत के साथ नेपाल में 22 पर्यावरण जागृति तथा आपदा प्रबंधन अभियानों का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया है। भारत के कई राज्यों में आपने मेगा कार्यक्रमों का निर्देशन किया। वर्ष 1985 में युवा वर्ष के दौरान आपके निर्देशन में भारत के 12 प्रांतों में भारत के विभिन्न प्रांतों में 12 पदयात्राएं निकाली गईं। उसमें आप यूथ विंग के सचिव पद पर थे। आप एक अनुभवी ट्रेनर और विभिन्न विषयों पर 1000 से भी अधिक आपके प्रेरक उद्बोधन हुए हैं। आपने यूएसए, यूके, रसिया, नेपाल, बांग्लादेश, अफ्रीकन कंट्रीज में भी बहुत सारी जगह जाकर के आपने यात्राएं करके अपने प्रवचनों के माध्यम से अनेक अनेक लोगों को लाभान्वित किया है। आपके द्वारा 5 पुस्तकें भी लिखी गई, प्रकाशित की गई, जिसमें विज्ञान, अध्यात्म, नैतिकता और पर्यावरण, आध्यात्मिक सशक्तिकरण, श्रेष्ठ संसार के लिए सार्वभौमिक सहयोग, शिक्षा में नई दिशा, ग्राम उत्थान आदि शामिल हैं। वर्ष 1992 में भारत सरकार के एचआरडी मिनिस्टर के द्वारा आपको पर्यावरण श्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। इसके अलावा यूएसए और यूके के द्वारा भी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट तथा स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के क्षेत्र में आपको जो है वर्ष 2004 में इंटरनेशनल अवार्ड से भी नवाजा गया। 2013 में राजस्थान की राज्यपाल के द्वारा भी आपको पर्यावरण के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए ग्रीन आइडल अवार्ड से सम्मानित किया गया। ऐसी महान विभूति हमारे संस्थान के जो है वरिष्ठ भ्राता हमारे बीच में है, आदरणीय मोहन सिंघल भाई साहब। मैं आपसे आग्रह करता हूं अपना अध्यक्षीय उद्बोधन सभी के समक्ष रखें। आदरणीय मोहन सिंघल भाई साहब।
ओम शांति। धन्यवाद स्टेज कोऑर्डिनेटर जी का, बहुत विस्तृत रूप में उन्होंने परिचय दिया। मंच पर विराजित हमारे विद्वान वक्तागण और सभा में उपस्थित आप सभी बहनों और भाइयों, विशेष करके मीडिया विंग से जो संबंधित हैं और जो विशेष इस मीडिया कॉन्फ्रेंस के लिए आज यहाँ पधारे हैं। वैसे तो कल ये मीडिया कॉन्फ्रेंस चल रही है 2 दिन से, लेकिन मैं आज पुनः आपका एक बार स्वागत करना चाहता हूँ इस ज्ञान सरोवर परिसर में, क्योंकि इस ज्ञान सरोवर परिसर की कुछ विशेषता है और जिसमें से अधिकतर आप सबने बताया कि यहाँ पर आते ही बहुत ही शांति का, शक्ति का एहसास होता है और ऐसा अनुभव होता है जैसे विचार अपने आप ही अंदर से, हृदय की अंतरात्मा से निकल रहे हैं। मैं इस संदर्भ में ये बताना चाहूँगा कि मुझे इस ज्ञान सरोवर के निर्माण का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और जब से यह जमीन ली गई थी तब से इस ज्ञान सरोवर परिसर का जो निर्माण हुआ उसमें एक विशेष बात का ध्यान रखा गया, वह यह कि यहाँ की जो प्रकृति है, नेचर है, उसको हम अधिकतर डिस्टर्ब न करें। न तो कोई विशेष पेड़ काटे गए, न इसको जमीन को खोदा गया विशेष, क्योंकि आपने देखा होगा हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट में भी कितना अंतर है। यह इस कारण है कि जो फ्लोरा एंड फौना यहाँ पर रखा गया है, मेंटेन किया गया है, उसके कारण प्रकृति शब्द, ये जो नेचर है, नेचर बाहर की नेचर और अंदर की नेचर, नेचर शब्द के दो अर्थ हैं, तो दोनों में एक बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है और यही एक विशेष कारण है कि पूरे विश्व भर से जो लोग भी यहाँ पर आते हैं वो यहाँ आके इस बात का अनुभव करते हैं, क्योंकि बाहर की नेचर और अंदर की नेचर का इतना अच्छा एक दूसरे से संबंध, संपर्क है, कोऑर्डिनेशन है और इस कारण से ही यहाँ हर मनुष्य को जो बाहर की नेचर के विशेष गुण है, जो हम जानते हैं 5 तत्व जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, वो ही तत्व जो है वो अंदर की हमारी नेचर के साथ बहुत अच्छी रीति से ऐसे एडजस्टेड हैं कि यहाँ जो कोई भी आता है वो इस बात की अनुभूति करता है, हार्मनी बिटवीन द इनर एंड एक्सटर्नल नेचर। ये मैं विशेष इस कॉन्फ्रेंस के रेफरेंस में बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा संबंध संपर्क विज्ञान से भी रहा है और साथ साथ मीडिया से भी बहुत गहरा शुरू से संबंध रहा है। पिछले लगभग 60 वर्ष से अधिक से मैं इस संस्था से संपर्क में हूँ और इसके अंदर यहाँ पर हमने देखा है विशेष करके जो ये ईश्वरी विश्वविद्यालय बताता है कि जो हमारी अंदर की वृत्ति होती है वो वैसा ही वाइब्रेशन हमारा बनता है, ऑरा डेवलप होता है और वैसे ही ऑरा से फिर वायुमंडल बनता है। तो ये ज्ञान सरोवर का जो वायुमंडल बना हुआ है वो वास्तव में विशेष इसी कारण से है कि यहाँ पर जो वाइब्रेशंस हैं और वो वाइब्रेशन का जो रूट कॉज है वृत्ति अंदर की, वो यहाँ रहने वाले व्यक्तियों की दिनचर्या में सुबह 3:30-4 बजे से ही वो मेडिटेशन का प्रोग्राम शुरू हो जाता है और इस प्रकार से वह चलता रहता है। और आज मीडिया की जो कॉन्फ्रेंस है उसके अंदर विशेष जो कैटलिस्ट है वर्ड और जहाँ पर न्यू सोशल ऑर्डर, ये वास्तव में दोनों एक साइंटिफिक वर्ड और एक मीडिया से दोनों का आपस में बहुत गहरा संबंध है क्योंकि कैटलिस्ट एक गति प्रदान करता है और जो सोशल ऑर्डर है वो भी एक कंटिन्यूअस चेंजिंग ऑर्डर को प्रदर्शित करता है। कोई भी समाज के अंदर परिवर्तन एक नियम है, सभी चीजों में परिवर्तन होता ही रहता है और यह परिवर्तन यहाँ पर ये प्रारंभ हुआ प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के द्वारा। मुझे ये सौभाग्य मिला है कि प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, जिनके बारे में आपको बताया गया होगा, जो इस संस्था के साकार संस्थापक थे निराकार परमात्मा शिव ने, उनके द्वारा इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की और मुझे उनके साथ रहने का सौभाग्य लगभग 9 वर्ष तो मिला और मैंने उनमें पाया कि उनकी वृत्ति इतनी पवित्र इतनी शक्तिशाली थी, तभी इस संस्था में आज भी लगभग 90 वर्ष पुरानी ये संस्था हो गई है, 90 वर्ष पहले इसकी स्थापना हुई थी और तब से ये संस्था की कंटिन्यूअस जो प्रगति होती जा रही है उसका एक मुख्य कारण प्रजापिता ब्रह्मा बाबा थे और इसके कारण से हमने ये अनुभव किया कि उनका ऑरा जो इतना शक्तिशाली था उसको जो ऑरा के सेंट पीटर्सबर्ग रशिया के अंदर मुझे जब जाने का सौभाग्य मिला एक बार, तो उन्होंने वहाँ पर बताया कि किरलियन फोटोग्राफी में ऐसा एक उनके द्वारा किरलियन नाम के साइंटिस्ट के द्वारा फोटोग्राफी का एक ऐसा प्रयोग हुआ कि मनुष्य की फोटोग्राफी के साथ साथ उसका ऑरा भी जैसे उसके अंदर आ जाता है। जब मैं वहाँ गया तो मुझे भी वहाँ पर उन्होंने इसके बारे में डिटेल बताया। यहाँ चूंकि मेरा संपर्क साइंटिस्ट इंजीनियर एंड आर्किटेक्ट विंग से रहा है पिछले लगभग 40 वर्षों से अधिक से, और इस कारण से वहाँ पर जब उन्होंने उसके डिटेल व्याख्या की और हमारा लगभग 3-4 दिन तक उस पर विशेष आदान प्रदान हुआ, तो उन्होंने एक बात बहुत अच्छी बताई मुझे, जो किरलियन जो साइंटिस्ट किरलियन फोटोग्राफी के वहाँ पर इंस्टीट्यूट है, आजकल वो किरलियन तो नहीं रहे हैं जिन्होंने इसका स्थापन किया, लेकिन जो एग्जिस्टिंग चीफ है, उन्होंने बताया वहाँ पर कि पूरे विश्व भर से लोग यहाँ पर आते हैं, सभी धर्म वाले आते हैं, सभी भाषा वाले आते हैं और ब्रह्मा कुमारीज वाले भी आते हैं और सबके वो ऑरा निकालते हैं, फोटोग्राफ लेते हैं और इसके माध्यम से वो उसको फिर एनालाइज करते हैं, और जब एनालाइज के बाद उन्होंने बताया कि मुझे ये बताते हुए बहुत बहुत हर्ष हो रहा है, खुशी हो रही है, जो किरलियन फोटोग्राफी के आजकल एग्जिस्टिंग चीफ हैं, कि दुनिया भर से सब धर्म वाले और सब भाषा वाले आते हैं, और जब निकाले जाते हैं ब्रह्मा कुमारी वाले भी आते हैं, तो जितना अच्छा ऑरा ब्रह्मा कुमारी वालों का होता है उतना अच्छा ऑरा और किसी का नहीं होता। इसका उन्होंने कारण भी बताया, जो कारण अभी आप सबने थोड़ा अनुभव भी किया, मेडिटेशन जो आदरणीय सुमन बहन जी ने आप सबको कराया। मेडिटेशन के द्वारा जो इंटरनल क्लैरिटी होती है, वो थॉट्स की क्लैरिटी होती है, विचारों में जो पवित्रता आती है, और उसके कारण से जो हमारा थॉट प्रोसेस कंप्लीटली चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर जो आप लोग आए हैं, तो वैसे तो सब जगह बहुत जगह चेंज होता है प्रोसेस कई प्रकार से। यहाँ पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट आपने देखा होगा, ये कम्प्लेक्स है, बॉटम मोस्ट पॉइंट में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया गया है, बहुत जगह होते ही हैं, देयर इज नथिंग न्यू। लेकिन ये ट्रीटमेंट प्लांट जो यहाँ के किचन वेस्ट आदि को क्लीन करता है, टॉयलेट आदि को क्लीन करके उसी वाटर को हम लोग यूज करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि थॉट प्रोसेस को वो यहाँ क्लीन करता है। और आप सब जो आए हैं, आप ही नहीं, पिछले लगभग जब से ये ज्ञान सरोवर की स्थापना हुई तब से इसके अंदर सैकड़ों प्रोग्राम में लोग आ चुके हैं, और यहाँ पर 140 कंट्रीज से अधिक डेलीगेट्स आते हैं, विदेशों से विशेष करके। आपको बताया गया होगा कि ब्रह्मा कुमारी इसकी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन राजयोग एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन के अंतर्गत हमारी 20 से अधिक विंग है, और अभी कुछ और अधिक विंग्स का उसमें एडिशन हुआ है। तो उन विंग्स के प्रोग्राम यहाँ पर कंटिन्यूसली हर साल चलते हैं, विश्व के 140 कंट्रीज के जो प्रोग्राम होते हैं, तो वो प्रोग्राम के आधार पर थॉट प्रोसेस में जो क्लीनलीनेस आती है, तो मुझे ये बताते हुए बड़ा गर्व का अनुभव होता है कि ये ही मेडिटेशन का प्रोसेस जो है, जो पूरे विश्व भर में आज आप सब जानते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी के अथक प्रयास से कुछ 23-24 जून को वर्ल्ड योगा डे डिक्लेयर किया गया है, 21 जून, और साथ ही साथ दैट इज योगा डे, और दिसंबर वो भी 21 ही है क्या, 21 दिसंबर को वर्ल्ड मेडिटेशन डे। तो योगा और मेडिटेशन, इन दोनों में भी क्या क्लैरिटी है, क्या अंतर है, वो बहन जी ने थोड़ा तो स्पष्ट किया, और अधिक उसकी स्पष्टता प्राप्त करने के लिए मैं ब्रह्मा बाबा की बात जो बता रहा था, तो ब्रह्मा बाबा के जीवन में उनका ऑरा ऐसा चमकता हुआ दूर से ही प्रदर्शित होता था उनके जीवन में। साधारण हमारे आपकी तरह प्रवृत्ति वाले थे, हीरे जवाहरात के व्यापारी थे, लेकिन जब उन्हें इस ज्ञान का आभास हुआ तो उन्होंने अपने जीवन में ही परिवर्तन नहीं किया, बल्कि इस संस्था की स्थापना की, जो आज वर्ल्ड की वन ऑफ द बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है मेडिटेशन के क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि लगभग संसार परिवर्तन में इतने अधिक 140 कंट्रीज में जो इसके केंद्र चल रहे हैं, ये साधारण बात नहीं। तो मैं इसमें सिंपली एक बात बताना चाह रहा हूँ कि ये ज्ञान सरोवर के अंदर जो स्थापना का कार्य किया है ब्रह्मा कुमारी इंस्टीट्यूशन ने, पांडव भवन हेडक्वार्टर और ये ज्ञान सरोवर, तो उसका एक विशेष कारण यही है कि यहाँ पर जो मेडिटेशन और जो बहन जी ने उस गुण जो शक्तियां बताई हैं, आत्मा का सुख, शांति, आनंद, पवित्रता, प्रेम, ज्ञान शक्ति आदि, मैं इन सब में विशेष नहीं जाना चाहता। वैसे भी अब इसके बाद जस्ट वैलेडिक्ट्री सेशन है, उसका भी आप सब लोग इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन एक बात को मैं ये जरूर आपको कहना चाहूंगा कि आप जब यहाँ से जाएं, तो यहाँ से जाने के बाद आप अपने नियरेस्ट सेंटर पर अवश्य जाएं, वहाँ पर इसका जो ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान और योग है, उसका अभ्यास करें। यू हैव नॉट कम हेयर ओनली एज ए मीडिया पर्सन, बट यू आर ऑल्सो द फैमिली मेंबर, फादर मदर एंड योर फादर्स आर देयर, बच्चे हैं, सब कोई हैं, और उन सब को भी ले जा करके एक परिवार में भी एक नई चेतना आप लाएंगे, तो केवल मीडिया पर्सन की तरह तो आप आए हैं, बहुत खुशी की बात है, लेकिन एक पारिवारिक होने के नाते भी आप कृपया इसका लाभ अवश्य उठाएं, अपने परिवार को भी दें। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार मैं पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप जाके जीवन में इससे पूरा लाभ उठाएंगे। धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति।
बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब का, जिन्होंने बहुत ही संक्षिप्त रीति से बहुत ही सुंदर संस्थान की गतिविधियों पर प्रकाश डाला और किस तरह से संस्था कार्य कर रही है वह भी बताया। मैं तहे दिल से भाई साहब का बहुत धन्यवाद करता हूं। और अभी इसके जस्ट बाद ही चूंकि वैलिडेक्टरी सेशन है, तो हम चाहेंगे कि हमारी बहनें आए और सभी हमारे सम्मानित अतिथियों को, हमारे सभी सम्मानित अतिथियों को सौगात और जो है प्रभु प्रसाद सभी को दें। सभी बहनों से आग्रह करेंगे, सभी सम्मानित अतिथियों को फोटोग्राफ और सभी सम्मानित अतिथियों को ईश्वरी उपहार और प्रसाद दें सभी को।